ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, जबकि पूरे भारतवर्ष से अनेक संत महात्माएं महामंडलेश्वर हमारे बीच में पधारे हैं। अरावली की इस पवित्र पहाड़ी पर, जो कि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली रही है, इस पर, इस पवित्र ज्ञान सरोवर परिसर में आप सभी पधारे हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत अभिनंदन है। साथ साथ में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए आज बहुत ही गर्व और गौरव का दिन है कि इतनी सभी महान पुण्य आत्माएं इस ज्ञान सरोवर परिसर में पधारे हैं। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं कुछ महान विभूतियों को। आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर पीताम्बरा विद्यापीठ मोदी नगर से हमारे बीच में आए हैं। नम्र अनुरोध है कि आप मंच को सुशोभित करें। आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी, अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग, जो प्रयागराज की पवित्र भूमि से हमारे बीच में आए हैं, मैं मनोरमा दीदी जी से भी अनुरोध करती हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे अति आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य श्रीमद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, संगठन मंत्री अखिल भारतीय संत समिति भुवनेश्वर से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच की शोभा बढ़ाएंगे। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं अखिल भारतीय संत समिति, हिसार हांसी हिसार से पहुंचे हैं, उनको भी मैं अनुरोध करती हूं कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज, मुख्य संचालक प्रज्ञा धाम पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी नीताजी महाराज, जो सूरत से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज, जो करनाल से हमारे बीच में आए हैं, नम्र अनुरोध है कि आप भी मंच को अलंकृत करें। महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर गोपाल खेत्री जी, जो कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं, उनसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर पधारें। आदरणीय ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, मुख्यालय संयोजक धार्मिक प्रभाग, आपसे भी अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर जी महाराज, दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर से हमारे बीच में आए हुए हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। काजी मौसम अख्तर, पद्म श्री अवार्ड चांसलर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर शोभायमान हो। महंत नानक दास जी महाराज, प्रमुख कबीर पंथी बड़ी खाटू, आपसे भी नम्र अनुरोध है कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री दिव्य आत्मानंद जी महाराज, नंगली तीर्थ धाम फरीदाबाद से हमारे बीच में आए हैं, आपसे भी अनुरोध है कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। उसके साथ साथ हमारी राजयोगिनी तपस्विनी बहनें, जो कि वर्षों से तपस्या करती हैं इसी सूर्य विश्वविद्यालय की बाल ब्रह्मचारिणी बहनों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वो दूसरी पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सोम प्रभा बहन सोलापुर से, कविता बहन जी भरतपुर से, पार्वती बहन जी बरेली से, करुणा बहन बदायूं से, राजश्री बहन ईस्ट पटेल नगर से, कमल बहन नारनौल से, रानी बहन सहारनपुर से और निर्मला बहन हुबली से, सभी राजयोगिनी बहनों से नम्र अनुरोध है कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया जिनके नाम अनाउंस हुए हैं वो जल्दी से जल्दी मंच पर अवश्य पधारेंगे। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है कि इतने सारे महान पुण्य आत्माएं इस धरा पर पधारे हैं, तो सचमुच में लगता है कि कुंभ का मेला जो है वो यहीं हो रहा है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जमगम तीरथ राजू। सचमुच में ये संतों का समाज कितना आनंदकारी सुखदाई है और ये चलता फिरता तीरथ राज है। मैं बहनों से नम्र अनुरोध करूंगी, लेकिन उससे पहले हम भारतीय संस्कृति के अनुसार कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं तो उस प्रभु पिता की स्मृति से करते हैं। हम सभी उस प्रभु पिता का आवाहन करते हुए बहुत प्रेम से दो मिनट के लिए ईश्वर पिता की याद में एक भजन सुनते हुए अपने मन को प्रभु पिता की याद में बहुत आनंदित होकर के आवाहन करेंगे।
One God, one world family. One God, one world family.
एक यही आवाज हर दिल से निकली,
एक यही आवाज हर दिल से निकली।
One God, one world family. One God, one world family.
विश्व एक परिवार है,
विश्व एक परिवार है।
एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family.
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले।
प्रेम एकता पवित्रता,
प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। वन गॉड One World Family।
सभी महान विभूतियों से मंच सुशोभित हो गया है। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि हमारी इन पुण्य आत्माओं का, महान आत्माओं का गुलदस्ते, बैजेस, पटके और तिलक के द्वारा स्वागत करेंगे।
Thank you.
इन महान आत्माओं की उपस्थिति से सचमुच में ये वातावरण बहुत ऊर्जावान हो रहा है। हमारे ये संत सचमुच में चैतन्य चंदन के वृक्ष के समान हैं, जिनकी खुशबू इस समाज को नित्य प्रति मिलती ही रहती है। और ऐसी महान आत्माएं जिनका त्याग, जिनकी तपस्या अनुकरणीय है, लाखों शिष्य इनका अनुकरण करते हैं, तो ऐसी महान विभूतियां जो मंच पर भी उपस्थित हैं और हमारे सामने भी उपस्थित हैं, दो दिन तक जो सत्र चलेंगे उसमें भिन्न भिन्न सत्रों में हम सबके प्रवचन सुन पाएंगे। कुछ आज सुनेंगे, कुछ शाम को, कुछ कल सुनेंगे। हम ये चाहेंगे जितनी भी महान विभूतियां यहाँ आई हैं उनके जीवन की तपस्याओं का, उनकी साधना का जो आनंद है वो हम सबको मिलता रहे। फूलों की सुगंध के साथ साथ एक दूसरी सुगंध भी आज वातावरण में फैल रही है, शांति की सुगंध, प्रेम की सुगंध, पवित्रता की सुगंध, जो सचमुच में इस वातावरण को बहुत ऊर्जावान बना रही है। हमारे ये सभी संत एक ऐसी मसाल हैं जो स्वयं जागृत रहते हैं और समाज के अंदर आध्यात्मिक चेतना को जगाए रखते हैं। हमारे ये सभी संत भारत की अध्यात्म की जो धरोहर है उसे सदा संजोए रहते हैं, इसलिए इनका बारंबार जितना अभिनंदन करें, जितना स्वागत करें उतना कम है। स्वागत की श्रृंखला में हमारे पास कुछ छोटे छोटे बच्चे भी खास दिल्ली पटेल नगर से हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो भी अपनी प्रस्तुति के लिए तैयार रहें। आज के दिन इन संत महात्माओं के साथ साथ इस सभा के अंदर पूरे भारत देश से बहुत सारी प्रभु प्रेमी आत्माएं जो इन संतों का अनुकरण भी करती हैं, इनकी त्याग तपस्या को वंदन करती हैं, अभिनंदन करती हैं, ऐसी प्रभु प्रेमी आत्माएं भी हमारे बीच में हैं। तो नीचे बैठे हुए सभी संतों का भी और सभी प्रभु प्रेमी जन जो इस प्रोग्राम में आए हैं सबका भी बहुत बहुत हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ पटेल नगर से आए हुए जो ग्रुप है बच्चों का, वो आप सबके स्वागत में अपनी मधुर आवाज से, अपनी थिरकन से आप सबका स्वागत करेंगे।
खाते
फिर हमारे दूर से चल के जो आप आए। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर,
ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर,
तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर।
देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम,
हो आप वो फरिश्ते शुभ होता जिनका नाम,
लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना,
उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना।
आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा,
मेहमान तो जहाँ में है रब का रूप प्यारा,
शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा,
अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा।
शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए, स्वागत है दिल से आपका,
स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए।
बहुत ही भावपूर्ण शब्दों के द्वारा और अपने नृत्य के द्वारा बच्चों ने आप सबका स्वागत किया। जोरदार तालियों से इन बच्चों का भी स्वागत करेंगे। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान। सचमुच में मानव जीवन ईश्वर की तरफ से एक अनमोल उपहार है और इस मानव जीवन के लिए कहा जाता हीरे तुल्य है। लेकिन आज उस मानव जीवन की जो स्थिति हम देख रहे हैं चारों तरफ, तो सचमुच में उसे देख करके लगता है कि आज के इस इंसान को ये क्या हो गया जो हम एक गीत सुनते हैं। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में फिर से मानव जीवन का कैसे उत्थान हो, फिर से मनुष्य के जीवन की वो शोभा, वो गरिमा फिर से कैसे कायम हो, जिसके लिए एकमात्र साधन अध्यात्म ही है। आज के इस विषय को स्पष्ट करेंगी हमारी मुख्य वक्ता, आज की राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी जो धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा हैं, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो 20 विंग्स हैं उसके अंदर जो धार्मिक प्रभाग है उसकी आप अध्यक्षा हैं, और बहुत ही अनुभवी हमारे बीच में आप प्रयागराज की पवित्र धरनी से पधारे हैं। आपके जीवन के अंदर सचमुच में जो जीवन मूल्य हैं, जो अध्यात्म है, जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है, उसे अपने जीवन में आत्मसात करके अनेक साधु संतों और लाखों आत्माओं की सेवा करते हैं। हमारे इस भारत देश के अंदर जो महाकुंभ हुआ, आपने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सूर्य विश्वविद्यालय की तरफ से प्रयागराज की उस पवित्र भूमि पर बहुत विशाल जो मेला है, मंडप है, वो लगाया और करोड़ों आत्माओं को ईश्वर का संदेश देने के निमित्त बनी। ऐसी हमारी बाल ब्रह्मचारिणी अथक तपस्विनी आदरणीय मनोरमा देवी जी, जो बहुत ही सरल स्वभाव, मिलनसार, मधुर भाषी हैं, मैं आमंत्रित करती हूँ आज के विषय को स्पष्ट करने के लिए।
ओम शांति। आज के सुंदर समागम में हमारे मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय राजयोगी भ्राता करुणा जी, तीसरी आंख के धनी है हमारे मीडिया प्रभाग के, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया जगत को एक आंख से देखते हैं, और इस यज्ञ की आध्यात्मिक धरा भूमि पे आप तप के धनी हैं, और दोनों का समन्वय करके चलते हैं। सदैव गतिशील, सदैव कुछ नया करने की प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। हमारे बीच उपस्थित हैं राजयोगी भ्राता द्वय रामनाथ जी एवं नारायण जी, और ये संत समाज जो अपने आप में बहुत बड़ी गरिमा संपन्न स्थिति में समाज को दिशा देने के लिए हर समय हर पल जागरूक और सचेत, सबका अभिवादन वंदन करते हुए मैं अपनी बात सभा में बैठे हुए उन सुधी श्रोताओं से करना चाहती हूँ जो स्वयं में भी बहुत विद्वान हैं। श्वेत वस्त्रों के साथ ये भगवा रंग अपनी छटा बिखेर रहा है मंच के नीचे भी, सबका अभिवादन, सबका वंदन हृदय से नमन करते हुए। कल बात कहीं छोड़ दी थी मैंने, शाम के सायंकालीन सत्र में, और आज प्रारंभ वहीं से करना चाहती हूं। विचारणीय है, बहुत विचारणीय है कि जब हम बात करते हैं विज्ञान सत्ता की, तो अंतरिक्ष में भी हमने ध्वज फहरा लिए हैं। धर्म सत्ता, राज सत्ता, चारों ओर प्रगति, चारों ओर एक जयकार, एक उद्घोष गूंज रहा है। कल यहां मंच से भी सनातन की बात हमने सुनी थी, मगर हमसे तमाम ऊंचाइयों प्रगतियों के बावजूद कुछ छूट रहा है, और वो जो छूट रहा है हमारा नैतिक बल, हमारा सदाचार, हमारा भाईचारा, हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारी दया। ये जो दो आंखें हैं ये बाहर देखती हैं, कुछ तो अंदर भी देखना चाहिए, और अंदर देखने का प्रयास तभी होता है जब उस जगत नियंता की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा होती है। जब तक परमपिता परमात्मा की अनुकंपा नहीं होती तो इस संसार में जन्म बहुत लेते हैं और बहुत चले जाते हैं, लेकिन इस तरह के भगवा रंग में नजर नहीं आते। ये ईश्वरीय अनुकंपा है जो अपने जीवन की राह उस परमात्मा के साथ जोड़कर उनके अनुसार चलने का संकल्प लिए कुछ धनी यहां मौजूद हैं। आज हम देख रहे हैं मानवता का उत्थान या मानव जीवन का उत्थान। सोचिए, पतन हुआ होगा तब तो उत्थान की जरूरत, अगर पतन होता नहीं तो उत्थान की बात नहीं आती। और ये पतन जो हुआ है वो नजर आ रहा है, कहने की बात नहीं। हम केवल कलयुग को आरोपित नहीं कर सकते, केवल समय की बात कहकर अपना दामन नहीं छुड़ा सकते कि साहब कलयुग है, ये तो होना ही है। प्रकृति तमोप्रधान हो गई है, मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान हो गई हैं, हमारा चिंतन तमोप्रधान हो गया है, हमारी मानवता भी नीचे उतरती चली आ रही है। मुझे बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत सी चौपाइयां दिमाग में घुमा करती हैं कि जो उन्होंने वर्णन किया था कि जब कलयुग होगा तो ये लक्षण नजर आएंगे, आज वो नजर आ रहे हैं। हमें कहने की जरूरत नहीं, आज ईश्वरीय महावाक्यों में भगवान ने जो उच्चारण किए और कहा कि प्रकृति अपना रौरव रूप, ऐसा भयंकर रूप दिखाएगी आपदाओं के रूप में सामने। कभी भूकंप सदियों में हुआ करते थे, आज आए दिन होते हैं। कभी बादल इतिहासों में फटा करते थे, आज आंखों के सामने फट रहे हैं, पहाड़ नीचे उतरते चले आ रहे हैं। हम फिर भी चूकते नहीं, क्यों नहीं चूकते, जरा विचार करके देखिए। दो तीन चीजें, एक चीज है इंप्रेशन, प्रभाव। हम एक दूसरे के सानिध्य में आते हैं तो जिसको कहते हैं ना स्पर्श की भाषा, उनके सामीप्य का असर। अगर पारसनाथ का स्पर्श पारस बना सकता है तो ये जो कलयुगी आत्माएं हैं इनका स्पर्श हमें क्या बना देता है, क्या बना देता है, वो विचार करके देखिए। कि जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो या तो हमें एक उत्साह होता है कि नहीं ये मुझसे आगे जा कैसे रहा है, मैं इसको पछाड़ के और मैं आगे जाके दिखाऊंगा। और अगर हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो है तो निराशा की गर्त में डूबते चले जाते हैं। और जब निराशा की गर्त में डूबते हैं तो जिसको कहते हैं डिप्रेशन, इंप्रेशन के बाद अगले वाले के यहां गाड़ी आ गई है बड़ी वाली, मेरे यहां क्यों नहीं आई, कब आएगी, और यह चिंतन डिप्रेशन ले आता है। और जब डिप्रेशन ले आता है तो हम तीसरा काम शुरू करते हैं, अच्छा न खरीद सकें तो कम से कम टांग पकड़ के तो खींचे, आगे न जाने पाए, ज्यादा कुछ न हो तो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वो भी नहीं बनता तो रिग्रेशन, भटकाव शुरू हो जाता है। और ये सब चीजें मिल करके हमारी आत्मा को उत्थान की जगह पतन की ओर ले जाती है। होता यह है कि असफलताएं आंखों के आगे अंधेरा बनकर छाने लगती है। हालांकि कोई झगड़ा नहीं है, एक बार सूर्य से अंधकार ने शिकायत सूर्य की मां से की थी कि आपके पुत्र बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मां ने सूरज से पूछा कि बेटा तेरी शिकायत आई थी, तू अंधकार को बहुत परेशान करता है। बोला मां मैं तो उसको आज तक देखा ही नहीं, मैं जब जाता हूं पृथ्वी पे तो मुझे तो आज तक मिला ही नहीं, मैं उसे कैसे परेशान करता हूं। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो घटती हैं जिंदगी में, कभी अंधकार लाती हैं, कभी प्रकाश की एक छोटी सी किरण लाती है। अंधकार जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हम आध्यात्म की ओर देखते हैं, हम अपने इन संत जनों की ओर देखते हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि हमारे पूजनीय संत स्वामी कमल किशोर जी ने बहुत कुछ कहा था कल,
सुराही एकदम खाली नहीं है। अगर ये सुराही एकदम खाली होती तो ये संसार बहुत पहले रसातल को चला गया होता। पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से श्री बाबा ने हमेशा कहा, ये दुनिया अगर टिकी है तो आप जैसे संतों के दम पर टिकी है, आप जैसे ब्रह्मचारियों के, आप जैसे आचरण करने वाले सदाचारियों पर टिकी है। कुछ तो है, बिल्कुल खाली नहीं है। तो हम आध्यात्म की ओर झांकने का प्रयास करते हैं कि हमें यहां से कुछ मिले। और वाकई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। याचक को कोई खाली हाथ नहीं लौटाता, जब पहुंच जाते हैं तो कुछ तो देते ही हैं। और ये कुछ कई बार दीपक बन के मिलता है, कई बार मशाले बनकर मिलता है। तो आज मैं, मेरे पास समय तो बहुत कम था, शायद ज्यादा ले लिया मैंने, मतलब ये कहना चाहती थी कि आध्यात्म हमारे जीवन में हमें मुक्त करता है उस व्याधि से जिसको हमारे संतों ने इंगित किया कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। आज जो हमारी जिंदगी घूम रही है वो मैं और मेरे के आसपास घूम रही है, मगर हमारी आदरणीय दादियों ने मैं और मेरा नहीं तू और तेरा सिखाया कि जो कुछ है वो तू है, करण करावन हार है तो तू है, और जो कुछ है तेरा है। मुझे जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आध्यात्म हमारे जीवन में, आपको बता दें कि जब आया तो मोरध्वज जैसे राजा ने पुत्र मोह से मुक्ति पाई थी, दधीची ने हड्डियों से मुक्ति पाई अपने, अर्जुन ने संबंधों से मुक्ति पाई, परशुराम ने जमदाग्नि के कहने पर मात्र मोह से मुक्ति पाई थी, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को पूरा राज्य दे करके उस राज्य से मुक्ति पाई, तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्ना के मोह से मुक्ति पाई, पन्नाधाय ने इसी राजस्थान की धरणी में अपने बेटे को बलि चढ़ाकर पुत्र मोह से मुक्ति पाई थी। आप और आगे बढ़ते चलें, सिकंदर जो कि आततायी था साम्राज्यवाद का, उसने उस विस्तार लूटे हुए धन से मुक्ति पाई थी। तो जब हम ये कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तो इस व्याधि का क्या अंत हो सकता है? क्या ये मैं और मेरा सुबह से शाम तक जीने का जो तरीका है, या जिंदगी उसी के आसपास चक्कर लगा रही है, अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सब कुछ समर्पण करके तू और तेरा की शरण में जाना पड़ेगा। और यह अध्यात्म हमको केवल यही सिखाता है, केवल यही सिखाता है। बहुत जीता, सिकंदर के पास अपना साम्राज्य भी था, और सिकंदर की आंखों को खोलने में अगर कोई सक्षम हुआ तो भारत का एक संत सक्षम हुआ था। अपने गुरु से पूछा था सिकंदर ने कि मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान, क्या लेकर आऊं, विजय का डंका बजाकर जब मैं लौट आऊंगा तो क्या लाऊं? उन्होंने कहा, राजन अगर तुम हिंद में जाना तो वहां से हमारे वास्ते ज्ञानी गुरु लाना, अगर ये हो सके मुमकिन तो गंगा जल भी ले आना। कुछ चीजें उन्हें गिनाई थी जो हमारी भारतीय परंपरा की परिचायक है। गंगा जल बहुत आसान था, मां जानवी उदार हृदय से अपना जल बांट देती हैं, लेकिन जब संत की बात आई उसने कहा नहीं, मैं इस भूमि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। बोला मैं तुझे सिंहासन दूंगा। बोला नहीं, तब भी नहीं जाऊंगा। बोला स्वर्ण में तौल दूंगा। बोला तब भी नहीं जाऊंगा। कहा हट जा मेरे सामने से। बोला मैं तुझे तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। आखिर में क्रोध आ गया। बोला वो तो पहले ही मर चुका हूं, तू क्या मारेगा मुझे। तो वो संत था कि जिसने आंख खोली सिकंदर की, कुछ साथ जाना नहीं है, कहां ले जा रहा है। तो वो जो चीज थी जिसके पीछे सिकंदर ने अपने मंत्रियों को कहा कि जब मैं जाऊंगा तो लूटे हुए जवाहरात को मेरे दाएं बाएं रख देना, मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। और इसीलिए कहा गया कि इकट्ठे घर जमी के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं था। तो यह अध्यात्म है, ये राजयोग है, जिसका निरंतर अभ्यास हमें मोह जैसी व्याधि से मुक्त करता है। और मैं मेरे की जगह तू तेरा कहना सिखाता है। और जब हम शरणागत होना सीख लेते हैं, आध्यात्म की पहली पायदान पर पैर रखते हैं, वहां से साधना का पहला पाठ सीखते हैं। यही हमारे पिता श्री जी ने भी हम लोगों को सिखाया था। मैं इसी के साथ वाणी को विश्राम दूंगी, बहुत वक्त है मंच पर, हम उनकी वाणी का अमृत पान करेंगे। ओम शांति।
आदरणीय मनोरमा बहन जी ने चंद शब्दों में बहुत सुंदर संदेश हम सबको दे करके गए कि मनुष्य के पतन का जो मूल है वो मोह है, आसक्ति है, और जब उससे ऊपर उठते हैं, जिसका ज्ञान गीता में भगवान ने भी दिया अनासक्त भाव, तो सचमुच में जीवन का उत्थान होता है। और जीवन के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, यही पतन का कारण है। और उत्थान के लिए चरित्र, नैतिकता और दिव्य गुणों की धारणा बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी बात मुझे याद आती है कि विवेकानंद जी जब विदेश में गए तो एक अंग्रेज महिला ने उनके साधारण लिबास, जो भारतीय लिबास है, धोती कुर्ता, उसे देख करके व्यंग्य किया, व्हाट ए जेंटलमैन। विवेकानंद जी ने उसका उत्तर दिया, मैडम इन योर कंट्री योर बार्बर, योर टेलर एंड योर शू मेकर मेक्स यू अ जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री ओनली कैरेक्टर मेक्स वन अ जेंटलमैन। तो हमारे देश में जो उत्थान की भूमि है वो चरित्र है, वो नैतिकता है, और उसी नैतिकता के द्वारा वो जो सद्गुण है वो मेडिटेशन से जीवन में आते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले वक्ता माननीय अतिथि आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर पीताम्बरा विद्यापीठ मोदी नगर से हमारे बीच में आए हैं। आपसे अनुरोध है आप अपने अनमोल दिव्य वचन हमारे सामने प्रस्तुत करें।
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्य नन्यश्नो अभिचाकशीति। आदरणीय मंच, सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं जब यहां आया था तो संत कमल किशोर जी ने मुझसे उससे पहले भी कहा था लेकिन नहीं आ पाया था, और आने के बाद मैंने यह महसूस किया कि मैंने पहले सुअवसर खोया था। यह एक दिव्य स्थान है जहां शब्दों में अपनी बात कम कही जा सकती है, लेकिन मौन एक पूरा ग्रंथालय धारण करता है। यह पर्वत श्रृंखला जिस पर पूज्य बाबा जी ने यह स्थान चिन्हित किया और निर्मित किया, यह मुझे स्वप्न में एक श्रीयंत्र सा दिखाई देता है, और उस श्रीयंत्र का प्रकाश यहां चतुर्दिक दिखाई देता है। वातावरण में ऐसा लगता है कालिदास ने यहीं बैठ के कुमार संभव लिखा होगा, क्योंकि बादल जब पास में आते हैं तो लगता है उस ईश्वर का, परम पिता का संदेश लेकर आते हैं और वो हमें छूते हैं, अनुभूति कराते हैं कि मैं हूं। यहां चूंकि विषय अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन के उत्थान से संबंधित है, तो उस पर एक सूक्ष्म चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय का भी 10-10 मिनट का एक समय दिया है भाई जी ने और बहन मनोरमा जी ने भी। अध्यात्म शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है, अधि अर्थात अधिगम, लर्निंग, और आत्म माने सॉल, अपनी आत्मा को सीखना, अपनी आत्मा को समझना, अपनी आत्मा को जागृत करना, इस अर्थ में अध्यात्म संस्कृत भाषा से निकला हुआ शब्द है। और बिना अध्यात्म के इस संसार में न तो कोई शुभ कार्य पहले हुआ, न वर्तमान में हो सकता है, न भविष्य में होगा, क्योंकि मनुष्य खुद को जाने बिना एक अंधेरी गली में निकल जाएगा और अंधन तमः प्रविशन्ति एके चात्महनो जनाः। वेदों ने कहा है कि अंधेरे की ओर निकला हुआ मनुष्य जो है वो एक बंद गली पर जाता है। आत्महत्या करने वाला जैसे पुरुष होता है, उसकी गति वही होती है। तो स्वयं को संसार को उपदेश करें वो भी एक अनुचार है, और हमें स्वयं को जानने का जो सबसे उत्तम मार्ग है वो मार्ग है हमारे ध्यान प्रक्रिया का। यहां एक अच्छी घटना मैंने देखी, अच्छे विषय विचार मैंने देखे कि कल बहन मनोरमा जी ने कहा कि हम सब सनातन के पुत्र हैं। संसार में बड़ा भ्रम है, ये विशाल वृक्ष है कि ये भूमि से आकाश तक लगा हुआ है, और कि उन पर बड़े से बड़े पस्वी, बड़े से बड़े ऋषि और मुनि उनकी शाखाओं में बैठकर, उनके गुह्वरों में बैठकर तपस्या कर रहे हैं। ऋग्वेद ने कहा था उपहवरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम धियो विप्रो अजायत है। ये एक पर्वत की गुफा जैसा एक दृश्य यहां है, जहां बुद्धि स्वतः संचालित होती है, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कान में आप अगर ध्यान करेंगे तो आपको वेदों के मंत्रों की ध्वनि या जिस इष्ट को आप ध्यान करते हैं उसकी ध्वनि आपको यहां गुंजारित मिलेगी। हां, उसके लिए आपको अंतस में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। एक छोटा सा कथानक इस बीच कह दूं, कहते हैं कि पहले ईश्वर हमारे साथ हमारे मोहल्लों में रहते थे, हमारे नगरों में रहते थे, और मनुष्य जिसको जो समस्या होती थी वो अपना जाता था, भगवान मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये सॉल्व कर दो, भगवान सॉल्व कर देते थे। धीरे धीरे जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा और लोग निठल्ले हो गए, उन्होंने कुछ भी कार्य करना बंद कर दिया। जब कार्य बंद कर दिया तो फिर वो हर अर्जी भगवान के खाते में डालने लगे, और भगवान 24 घंटे व्यस्त हो गए, उन्हें समय निकलना मुश्किल होने लगा। तो भगवान जो है उन्होंने थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा नदी किनारे एक स्थान बना लिया कि चलो अब यहां रहेंगे। लेकिन यायावर मनुष्य ढूंढता ढूंढता वहां भी पहुंच गया और देखा भगवान मिल गए। उसने सबको बता दिया कि भगवान आजकल वहां है, तो चलो अब किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की लड़की की शादी नहीं है, किसी के बच्चे की फीस नहीं है, सब वहां अर्जियां लगने लगी, भगवान को फिर एक कार्य मिल गया। उसके बाद भगवान बहुत परेशान हुए तो उन्होंने क्या किया, पर्वतों की श्रृंखलाओं पर अपना आश्रय बनाया, और बड़े ऊंचे पर्वतों पर जब भगवान रहने लगे तो यायावरी मनुष्य वहां भी पहुंच गया, और उसने वहां पहुंचकर देखा ये आया, और उसने फिर सबको बता दिया, तो भीड़ पर्वतों पर जाने लगी। अब भगवान पर वहां भी वही चिट्ठियां थी, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, मेरे बेटे की पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे पिता का रोग ठीक नहीं हो रहा है, और मेरी ये समस्या, मेरी वो समस्या, भगवान बड़े परेशान हुए। आखिर भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक सूक्ष्म रास्ता निकाला, भगवान ने मनुष्य के मन में अपना आश्रय बना लिया। अब भगवान बाहर नहीं रहते हैं, भगवान इसी शरीर में रहते हैं और मनुष्य मंदिर मंदिर भटकता है। ये भटका समाप्त नहीं होगा तब तक किसी का भला नहीं होगा और ना कोई भला कर पाएगा। करना है तो ध्यान करिए, वह ईश्वर हमारे ही अंदर। मैं सुबह के ध्यान सत्र में आया था और हालांकि मैं 3-4 मिनट लेट हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो वैदिक ध्यान परंपरा है वही परंपरा दूसरे रूप में है, लेकिन बहुत सारे मार्गों से बहुत सारे पथिक चलते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। इसी प्रकार यह ब्रह्मा कुमारी मत ज्वारा, ये जो कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है, ये उसी परंपरा का एक भाग है। हम सनातनी हैं, ये सनातन की योग्यता है कि वो सबको समेट लेता है, सबको समाहित कर लेता है। महाभारत की गणना से यदि देखते हैं तो 5127 वर्ष के लगभग का साहित्य सामान्य तौर पर उपलब्ध है और हम अपने पहनावे से, अपनी भाषा से, अपनी शैली से हम दूर होते चले गए और धीरे धीरे हम निराशा में डूब गए। जब ब्रह्म कुमारी मत में जब ओम शांति का एक शब्द प्रयोग होता है और ये ओम शांति संसार को शांत रखने के लिए ईश्वर और शांति दोनों को क्लब करके जब इसको पाठ करते हैं और ओम शांति का उच्चारण करते हैं, इसके पीछे संसार की सभी विडंबनाएं, सभी कष्ट और सभी ऐसी विषय वस्तुएं जिनसे क्लांति आए वो सब नष्ट होती हैं और उनको नष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले अपना सुधार करना पड़ेगा। यदि हम अपना सुधार नहीं करेंगे तो न तो उत्थान हो सकेगा, न मानवता ही रह सकेगी, न अध्यात्म ही हो सकेगा। हम बदलना नहीं चाहते। और आजकल ज्योतिष में पहले एक ग्रहों से गणना की तो सूर्य आदि से देखते थे, क्योंकि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो आत्मा का कारक वेदों ने कहा है सूर्य। सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च, सूर्य जगत की आत्मा है और पृथ्वी पर प्रतिनिधि है। यज्ञ कुंड में जैसी भी आहुति देते हैं देवताओं के निमित्त, वो यज्ञ कुंड में वो सबको ग्रहण करता है, वो किसी को मना नहीं करता कैसी भी कोई अर्पित कर रहा है। तो वह अग्नि, वह शक्तिपुंज के रूप में प्रत्येक मानव के अंतस में है। यदि मनुष्य के अंतस में शक्तिपुंज नहीं होगा तो शिव का शव रह जाएगा, शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो शक्ति के चक्र को जागृत रखने के लिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो जागृत रखने के लिए आना चाहिए और ऐसे पुण्य तीर्थों पर तीर्थाटन, इससे सनातन की सभ्यता पुनः अपने वास्तविक रूप को प्राप्त हो सके। ओम।
धन्यवाद आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी, बड़ा सुंदर संदेश उन्होंने हमें दिया है कि हमें अपने अंतर जगत में झांकने की आवश्यकता है। यदि प्रभु का दर्शन करना है, उस ईश्वर से प्रेम रखते हैं और उत्थान चाहते हैं तो अपने अंदर जाने की आवश्यकता है। और मुझे बड़ा महसूस होता है दिल से, महान विभूतियों को थोड़ा सा इशारा देने के लिए खड़ा होना पड़ता है। मैं क्षमा याचना करती हूँ और साथ में ये अनुरोध भी करती हूँ कि 8 से 10 मिनट के अंदर अपने प्रवचन को पूरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामने घड़ी है आपके, इसलिए थोड़ा सा सभी ध्यान रखी। सम्मान करना चाहती हैं कुछ संस्थाएं, हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी का, रामनाथ भाई जी का और करुणा भाई जी का। और ये सम्मान केवल कुछ मोमेंटो का नहीं है, ये सम्मान केवल व्यक्ति का नहीं है, ये सम्मान इनके त्याग का है, इनकी तपस्या का है। तो इसलिए पहले मैं अनुरोध करती हूँ करुणा भाई जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर केसीबी शर्मा जी और महामंडलेश्वर पीसी हल्दर जी कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं, हमारे मल्टी मीडिया चीफ आदरणीय करुणा भाई जी राजयोगी तपस्वी उनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर केसीबी शर्मा जी, महामंडलेश्वर पीसी हल्दर जी कलकत्ता से जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। और इसके बाद स्वागत की श्रृंखला में हमारी राजयोगिनी तपस्विनी मनोरमा दीदी जी, उनका सम्मान करना चाहते हैं आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी, महामंडलेश्वर श्री सुरेंद्र शर्मा जी महाराज, गुरु माता अनीता जी महाराज और साध्वी मनीषा जी, साध्वी नीना जी। साथ 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 मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय रामनाथ भाई जी, रामनाथ भाई जी का भी स्वागत हमारे शास्त्री कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा सहारनपुर और उनके साथ में आए हुए सभी संतगण जो रामनाथ भाई जी का स्वागत कर रहे हैं मोमेंटो के द्वारा, पटके के द्वारा। आप सब भी तालियों के साथ इन महान विभूतियों का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है। मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि हमारे इस भारत देश के अंदर जो सम्मान होता है वो धनपतियों का नहीं, अरबपतियों का नहीं, लेकिन जो चरित्र के धनी हैं, जो त्याग के धनी हैं, तपस्या के धनी हैं, उनका सम्मान होता है। और इसका उदाहरण हम देखते हैं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जी को दिखाते हैं कि कंस को सिंहासन से उठाकर धरती पर पटका और उसे पटक पटक के मारा, लेकिन उसी योगेश्वर ने सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया, उनके चरण धोए और उनका सम्मान किया। तो वो सम्मान वैभव का नहीं था, वो सम्मान त्याग का था, वो सम्मान चरित्र का था। और आज वही सम्मान हमारी महान विभूतियों का किया गया। और अब मैं अनुरोध करती हूँ छोटे छोटे बच्चे एक छोटा सा स्किट प्रस्तुत करेंगे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में,
आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राहों में।
गूंज रहा शिव का संदेश हो।
सुजलाम सुफलाम मलयज शीतल यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है कि सचमुच में वो ईश्वर पिता भगवान कैसे धरा पर फिर से आकर के अपना अपने वायदे के अनुसार अपना कार्य कर रहे हैं। जब जब अधर्म और पाप की अति हो जाती है तो भगवान आकर के तीन मुख्य कार्य करते हैं, संस्थापनाय धर्म संस्थापनारे प्रीत्राणाय साधु नाम, जो सज्जन वृत्तियां हैं उनकी रक्षा करते हैं, विनाशाय च दुष्कृतान दुष्प्रवृत्तियों का विनाश करते हैं और धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये बड़ा सुंदर संदेश बच्चों ने हम सबको दिया, जो वर्तमान समय उस ईश्वर पिता का कार्य इस सृष्टि पर चल रहा है। मैं अनुरोध करती हूँ जो पीछे भाई बहने बैठे हैं हमारे, थोड़ा सभी आगे आ जाएं, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम पूरे विश्व में लाइव जा रहा है, तो इसलिए जो भी बैठे हैं कृपया एक मिनट में सभी आगे आ जाएंगे। और अभी इस कार्यक्रम का हम विधिवत उद्घाटन करेंगे दीप प्रज्वलन के द्वारा। मैं बहन भाइयों से अनुरोध करती हूँ कि वो दीपक की व्यवस्था करेंगे। बीच में जो हमारे महान विभूतियां बीच में बैठी हैं वो सभी आएंगी आगे की पंक्ति में। मेरे बाईं तरफ जो स्टैंड है उस पर हमारी राजयोगिनी तपस्विनी बहने रहेंगी, और जो मेरे दाईं तरफ है इसमें भी जो संत बीच में थोड़ा सा भीड़ महसूस करेंगे तो हम मेरे दाईं तरफ के मंच पर वो सब आएंगे। दीपक स्टैंड पर हम सभी दीप प्रज्वलित करेंगे। सचमुच ये दीपक बहुत सुंदर संदेश देता है। ये जगते हुए दीपक हमारी आत्म ज्योति जगाने के प्रतीक हैं। ये दीपक श्रद्धा का दीपक है, ये दीपक सम्मान का दीपक है, ये दीपक अंधकार को खत्म करके प्रकाश, अंदर का प्रकाश, वातावरण का प्रकाश उसका प्रतीक है। तो अभी हम सब दीप प्रज्वलन में, आप सभी भी अपने मोबाइल की जो लाइट है, टॉर्च है, उसको जला करके इस दीपक में अपने स्थान पर बैठे हुए सम्मिलित होंगे। सभी दीप जगा करके ऊपर करेंगे
और हम सभी बैठे हुए अपनी टॉर्च की लाइट के साथ साथ आत्मा की प्रकाश को ओम की ध्वनि के साथ प्रकाशित करते हैं। चलिए सभी मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं। ओम 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 ओम।
बुधे शुभम कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपद शुभम कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धन संपद
जगते हुए ये दीपक हम सभी को ये संदेश देते हैं कि अपनी आत्म ज्योति को जगा करके हम शांति का प्रकाश आनंद का प्रकाश अपने आसपास के वातावरण में फैलाएं और वो बहुत सुंदर शब्द हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो असत्य से सत्य की ओर ले चलो वो याद आते हैं। सचमुच में ये हमें बहुत एक आत्म जागृति का संदेश देते हैं। और अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय करुणा भाई जी जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मल्टी मीडिया चीफ हैं और पीस ऑफ माइंड अवेकनिंग चैनल बहुत सारे चैनल आपकी अध्यक्षता में चलते हैं 60 से भी अधिक वर्षों से माना संपूर्ण जीवन जिन्होंने ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया है मुख्यालय में रहते हैं। आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी हैं बहुत ही विनम्र हैं मिलनसार हैं और सरल जीवन है बड़े निर्माण चित हैं अथक सेवाएं करते हुए भी रिंचक मात्र भी उन्हें उसका एहसास नहीं है ऐसी महान विभूति का हम आवाहन करते हैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हम सबको बताएंगे कि मानव जीवन का उत्थान किस अनुभूति से होता है।
ओम नमः शिवाय सत्यम शिवम सुंदरम। मंच में मेरे साथ बैठे हुए पूज्य सर्व आत्माओं को एवं सामने भी बैठे हुए हैं क्योंकि स्टेज छोटा होता था तो इसलिए बाकियों को अभी अगले हमारे जो सेशंस होगा उनमें आप सभी को भी ऊपर बिठाएंगे। वैसे भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज एक विश्व संस्था के रूप में है बहनों द्वारा संचालित, परंतु आप देखते हैं कि बहनें भाइयों के लिए भी कितना प्यार रखते हैं और आप सबको बुलाने का एक ही कारण है कि ईश्वर ने उनों में ये अंतर थोड़ा सा भाई बहनों के लिए तो है परंतु इससे भी थोड़ा आध्यात्मिक रूप से हम देखते हैं तो हम सब आत्माएं हैं एक ईश्वर के संतान है तो उस भाव से भी हम सभी आज एकत्रित हुए हैं। भले संस्था 1936 से शुरू हुआ 14 साल भारतीय संस्कृति की त्याग तपस्या और ज्ञान इस समय पर जैसे आप जानते हैं ईश्वर ने समय समय पर अनेक महान आत्माओं को इस सृष्टि पर भेजे, उसका फलस्वरूप हम सभी आज यहाँ बैठे हैं। वही संस्कृति ही हमारे साथ है। जैसे कई आप में पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं, मैं भी पहली बार यहाँ सन 1960 में आया था, तो जब पिताश्री भी थे, 9 साल उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी 5 साल तक हमारे साथ रहे, तो मैंने एक बात पूछा था उनसे उस समय पर, तो क्या हम कोई और संस्था तो नहीं बना रहे हैं, जैसे अन्य पंथ है, धर्म है, तो ऐसा? तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, उसका लिखित भी, जिसको हम मुरली कहते हैं, जो रोज हम 4 पेज पढ़ते हैं, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट बताया हुआ, लिखा हुआ है कि बच्चे, भारत में जो एक धर्म था जिसका नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसी की ही पुनर्स्थापना हो रही है। उस समय पर हमारे सामने पूरी तरह से समझ में तो नहीं आया था, और ये भी कहते थे कि भाई इस सृष्टि के परिवर्तन का समय आ चुका है, अब हो रहा है। तो हमने भी देखा जो पिताश्री ने बहनों की संस्था को किस तरह से लगभग 400 बहनें एक स्थान पर रह करके तपस्या करते हुए भारत में आके फिर से सारे विश्व में आज भारतीय संस्कृति को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। और आप जानते हैं दूसरे जो संस्कृति है वहाँ ज्ञान से ज़्यादा जो हमारी बहनें वहाँ कैसे जी रहे हैं वो देखते हैं। जब तक हमारे जीवन में जो हम बताते हैं, सिखाते हैं, वो नहीं दिखता है, तो वहाँ संस्कृति बदल नहीं सकते हैं। परंतु आज सारे विश्व में 140 देशों में आज हमारे बहनें भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को इन्होंने प्रदान किए हैं, और वहां से लोग आते हैं हर साल, यहाँ लगभग 1 लाख भाई बहने हैं यहाँ विजिट करते हैं इन देशों में भी। तो मैं यही आप सबको बताना चाहता हूं, जो कार्य बहने कर रहे हैं तो आपके सामने है, आप प्रैक्टिकली इन लोगों का जीवन कैसा है, किस तरह से सुबह 3:30 बजे उठते हैं, 5 बजे तक सुबह तपस्या करते हैं अपने लिए, स्व के लिए, और हर रोज इसके बाद विश्व की सेवा के लिए प्लान करते हैं। जहां हम कहते हैं कि भारत में एक समय पर गुरुकुल शिक्षा थी, जिसको सनातन धर्म हम कहते थे, तो आप जानते हैं जो भी भारत के ऊपर राज किया तो उन्होंने पहला काम यही किया था, जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त करके, जो वो लोग जो हमको भारतीय भाषा में कहते हैं कि बाबू बन सके, जिसको क्लार्क कहते हैं अंग्रेजी में, तो उतनी शिक्षा हमारे पास रहे। बाकी तो कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएंगे, दूसरे जगह से पढ़ के आएंगे, तो ऐसी शिक्षा हम लोगों को अब तक देते रहे। परंतु हमारी बहनें, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, मैंने भी एक बार पिताश्री जी से कहा था, हमारा जो सर्वश्रेष्ठ किताब है जो भगवद गीता, तो क्या हम यही लोगों को सिखा दें? तो उन्होंने कहा, नहीं बच्चे, आप पढ़ सकते हो, परंतु जब तक आपके जीवन में नहीं है तो आप इसको शिक्षा देने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि भाई राम राम कहने से हम पार हो जाते हैं, तो जब नदी के पास आए तो पूछ रहा कि भाई नाव कहाँ है। तो गीता ही पढ़ने से हो जाता, तो गीता किताब तो सब जगह मिलता है और इसकी भाषा भी बहुत लोगों ने बना दिया है। परंतु आप सबके साथ मैं यही कहूंगा, रात दिन हम लोग यही प्रयास करते हैं, तो हम लोगों को देख के ही जो भी कुछ भारतीय संस्कृति है, तो बाबा जी ने कहा था ये कि आज भारत अभी भी दूसरे देशों से अच्छा इसीलिए है कि आप सभी भी जो भारतीय संस्कृति को अपने फॉलोअर्स के साथ आपने भारत को अभी तक इसको अच्छा रखा है, तो लोग सुनते हैं। आज भी हजारों के संख्या में आप सबको सुनने के लिए आते हैं। तो हमारी बहनें, जिसको हम क्लास कहते हैं, हम सब विद्यार्थी समझते हैं अपने को, तो हमारी बहनें उसके टीचर्स कहा जाता है। तो ये शिक्षा के रूप में बड़ी सरल शब्दों में, जैसे मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक ही शब्द के कारण आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मरेंगे नहीं। मैंने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है, जो भी जन्म लेता है वो तो मरेगा ही। परंतु उन्होंने मुझे ये बताया कि शरीर तो मरेगा ही, क्योंकि आपने शरीर लिया है। मां कह सकते हैं कि आप कब इस शरीर पे आए, और इसके बाद, क्योंकि आजकल पहले पासपोर्ट बनाते थे तो बाप का नाम होता था, अभी मां का नाम कहते हैं। तो शरीर को हम छोड़ते जरूर है, कोई भी हो, परंतु हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये ज्ञान हमने यहां प्राप्त किया प्रैक्टिकली, पढ़ते जरूर थे, ज्ञान तो था हम लोगों को, परंतु अनुभव उसका करने का जो विधि है, जो हमारी बहनों ने हमको सिखाया। दूसरी बात, ईश्वर है तो मैंने, हमारे दादी जी बैंगलोर में आए थे तो उनसे मैंने पूछा, आप क्या करते हैं? तो कहा, मैं परमात्मा को याद करती हूं। तो मैंने कहा, कौन सा परमात्मा? तो उन्होंने मेरे सामने बहुत हंसा। तो मैंने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं, मैंने ऐसा क्या गलती किया? तो उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ पढ़ा है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सोच से तो द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शक्ति विशिष्टाद्वैत है, ये सब चीजें हम लोगों ने देखा है, बसवर्ण का भी है वहां। तो मेरा यही था कि आज भी मैं यही कहता हूं कि जो भी विश्वास करते हैं, जिसमें भी, जिस तरह से भी हम बहुत बहुत उनको धन्यवाद ही देते हैं, ये नहीं कहते कि ये क्यों ऐसा है वो क्यों ऐसा है। परंतु उस समय पर दादी जी ने मुझे इतना जरूर कहा, बच्चा एक ही है, बाकी देवताएं हैं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, पर शंकर के लिए महादेवाय नमः कहते हैं, क्योंकि उनका रूप भी है, उनका संसार का भी बताते हैं, परंतु ईश्वर जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, शंकराचार्य जी भी कहा था। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में एक ईश्वर को जो निराकार ज्योति स्वरूप है उसको हम ध्यान करते हैं सुबह, तो मैं इसलिए अधिक बताना नहीं चाहता हूं। आप दो तीन दिन हमारे साथ है, आपको हमारी बहनें बताएंगे हम क्या यहां करते हैं, तो आपको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, क्योंकि कईयों को अभी तक भी नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं यहां। तो हम यही आशा करते हैं समय अनुसार सनातन धर्म को फिर एकत्रित होकर के हम भारत में फिर से कैसे स्थापना करें, और आप सबके साथ के बिना वो नहीं हो सकता है, हम सब एक होकर के ही ये कार्य होगी, ऐसे आशा करते हुए मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अति आदरणीय करुणा भाई जी, आपने अपने प्रवचन में एक सुंदर संदेश दिया है विनम्रता का। बार बार उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ बहनें जो सिखाती हैं, बहनें जो सिखाती हैं, वास्तव में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर भाई और बहनें सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। हमारे रामनाथ भाई, नारायण भाई जी गुप्त उस कोने में बैठे हैं, और हमारी मनोरमा दीदी जी, ये सब मिल करके इस धार्मिक प्रभाग को चला रहे हैं और संस्था की अन्य गतिविधियों को भी। तो इसलिए सब मिलजुल करके, और केवल इस संस्था के ही नहीं, आप सभी साधु संत महात्माएं, महान पुण्य आत्माएं, आप सबके सहयोग से हम इस विश्व को फिर से सुंदर बनाएंगे। तो आप और हम सब मिलकर करेंगे, भले ही हमारी पूजा पद्धति अलग अलग हो, हमारी उपासना की विधि अलग हो, हमारी वेशभूषा भी थोड़ी सी अलग है, हो सकती है आपने भगवा धारण किया है, किसी ने सफेद धारण किया है, लेकिन हम सबका मकसद एक ही है कि इस विश्व के अंदर, इस समाज के अंदर प्रेम, एकता और सद्भावना का संदेश देना। तो हम सब मिलजुल करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और अब मैं अनुरोध करती हूँ आचार्य श्रीमद् स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, संगठन मंत्री अखिल भारतीय संत समिति भुवनेश्वर से हमारे बीच में आए हैं। थोड़ा सा समय सीमा का ध्यान मैं फिर से याद दिला देती हूँ, क्योंकि आप सबके पास अथाह ज्ञान का भंडार है। आप लंबी लंबी कथाएं करते हैं, लेकिन केवल उसका मक्खन थोड़ा सा आज हम चाहेंगे 8-10 मिनट में आप सभी हम सबके सामने प्रस्तुत करें।
ओम शांति। ओम भद्रं कर्णे श्रृणियाम देवः, भद्रं पश्चिमश्चभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैस्तृष्णुवंसस्तन्नुभिर्व्यसेमदेवहितं यदायो श्रुतिशास्त्रपुराणालयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतवन्दे भगवन्त पुनः पुनः। ईश्वर गुरुनाप्नेति मूर्ति भेद विभागिने व्योम पद व्याप्त देहाय ओम श्री दक्षिणामूर्तये। जगत नाथ, जगत नियंता, सृष्टिकर्ता, जगदीश्वर, परमात्मा, परम पुरुष, किसी चरण में नमन करता हुआ, वंदन करता हुआ, अभी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये आयोजित किया गया धार्मिक प्रभाग संत सम्मेलन जो विषय चर्चा हो रहा है आध्यात्म माध्यम से मानव का उत्थान, इस विषय पर चर्चा पर सभी आए हुए पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर आचार्य के चरण में नमन और वंदन करता हुआ, यहाँ के सभी राजयोगिनी राजयोगी ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार सभी भाई बहनों की भी श्रद्धा और आभार व्यक्त करते हुए, सामने बैठे हुए सभी भी महापुरुषों की और सभी भाई बहनों की भी श्रद्धा व्यक्त करता हुआ मेरा वाणी शुरू करता हूँ। हमने सुन रहे जिस समय में धरती में कुछ विजय होने का है, जब कुछ दुष्परिणाम के प्रभाव से पतन की ओर से जा रहे, कहीं ना कहीं महापुरुष जन्म लेते हैं, कहीं ना कहीं महानुभव इस धरती के ऊपर आते हैं। तो हमने सब कुछ चर्चा कर रहे हैं, ये तीनों बात याद रखनी चाहिए, आधी भौतिक आधी दैविक आध्यात्मिक, ये तीनों हिस्सा है। आधी भौतिक जो है समाज में आकर, देखिए बच्चे ने पैदा ही हुए, बाल हुई, बाल का फिर उससे पश्चात युवा बने, पढ़ा लिखा ज्यादा किए, नौकरी किए, व्यवसाय किए, उनके भी ब्याह हुई, शादी के बाद बच्चे भी आए, नौकरी किए, उनका भी मकान गाड़ियां कई लाख और सैकड़ों रुपया जेब में रखे, उम्र बढ़ गई, बीमार पकड़े, राम नाम सत्य हो गई। तो जिंदगी में जन्म से मृत्यु तक क्या किए, गाड़ी मकान कुछ तंका है। तो परमात्मा दरबार में क्या बोल रहे, आपकी जिंदगी इतना ही नहीं है, ये नित्य कर्म सोच लेना। सुबह उठकर जैसे हम लोग नित्य कर्म करते हैं, एक दिन नित्य कर्म गढ़ जाए, समय बीत जाए, तो हमको कैसे महसूस हो रहा है। तो इसे ही आपका जीवन का ये नित्य कर्म है, ये दिनचर्या नहीं है। आपको गाड़ी बनाना, मकान खरीदना, मकान बनाना, तंका रखना, दौलत बनाना, जितने भी करना, ये है आपका नहीं है, ये जिंदगी ये नित्य कर्म है। दिनचर्या कहां गया, कहां भय गया, इसी चक्कर में जो चपट के रहते हैं, इसी विचार में जो रहते हैं, हम अपना गाड़ी करना, मकान बनाना, अपने देखना, ये भौतिक में चपट में रहते हैं। जिंदगी भर भौतिक आदि भौतिक आदि दैविक उपासना पद्धति की ओर से आइए, मैं कम समय में पूरा करता हूं। तो उपासना की ओर से अलग अलग तरीका रहता है, जैसे बहन जी बोल रहे, लक्ष्मी बहन दीदी जी ने, तो अलग अलग तरीका रहती है, सभी तो हम एक है, आखिर मंजिल तो ऐसी है, जिस मंजिल तक पहुंचना उपासना तो अलग रहेगा। तो ऐसे कहने की बात है, जब हम नीचे काम करते हैं, देखिए आध्यात्मिकता की ओर से हम जब बढ़ जाएंगे, पहले मनुष्यत्व, क्यों हम जो नीचे काम करें, पशु का गुण है, छिद्रता का, नीचत्व का, दानव का गुण है, ये विनाश होने के बाद हम मनुष्य के ओर से दौड़ेंगे, हम मनुष्यत्व प्राप्त करेंगे। हमारा चारों ओर से मनुष्य का एक आच्छादन है, अंदर में जो है मनुष्यत्व, ह्यूमैनिटी, ये कैसे पैदा होगी, जिस दिन ये पशुओं का गुण, दानव का गुण, नीचत्व हिंसत्व का गुण नुकसान न हो जाए, जिस दिन हो ही जाएगा, आप अपने आप धीरे धीरे आगे मनुष्यत्व की ओर से बढ़ते जाएंगे। अब मनुष्यत्व के पश्चात देवत्व, देवत्व के पश्चात ईश्वरत्व, और ईश्वरत्व के पश्चात ब्रह्मत्व, ये ब्रह्म तक पहुंचना। सबसे पहले अब इंसान मानव बनना, ये हमारा पहला धर्म है। तो मानव का गुण है इस सेवा करना, सबको प्यार देना, सुख शांति ही मनुष्य की ओर से आता है, भगवान ने इसलिए मनुष्य जीवन लेते, मनुष्य रूप धारण करके आते हैं। तो इस मानव जीवन में सब कुछ होता है, हम मानव जो चाहे वही कर सकते हैं, और वो आगे बढ़ेंगे तो हम बोलते हैं देवतुल्य है, ये देवता जैसे है, देवी जैसे है, ये कैसे, जैसे दुर्गा, काली, गणेश, गणपति, भगवान जैसे पूजा करते, नारायण को कबीर भगवान को, जैसे कैसे वो मानव से ऊपर है देवताओं के रूप से, और आगे उससे चले ईश्वर जो बोल रहे हम योग के माध्यम से बोल रहे, तदेवार्थ मार्थम स्वरूप शून्य इव समाधि, जिसमें रूप नहीं गंध नहीं रस नहीं है, ईश्वर तत्व है। भले ही हमने शिवलिंग को पूजा करते हैं, चढ़वा करते हैं, कुछ कुछ माखन लगाते हैं, कुछ भी कराते, लेकिन असली तत्व क्या है? शिव होने से ही शिवत्व। हम बहुत सारे जानते हैं, शंकराचार्य महाभगवान बोले, मनोबुद्धि अहंकार चिदादिनाहम् न सत्रं न जिह्वा न घ्राण नेत्रं न न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम् शिवोहम्। इसके पश्चात मैं बोल देना चाहता हूं, न मे द्वेष राग न मे लोभ मोह मद नैव मे नैवम् आश्चर्य भावम् न धर्म न चार्थं न काम न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम् शिवोहम्। इसके पश्चात भी हम जानते हैं, फिर भी पाप पुण्य कैसे समझते हैं? न पुण्यं न पापं न सुखं न दुखं न मंत्रं न तीर्थं न वेदान्यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम् शिवोहम्। इसके पश्चात भी हम फिर भी चिपट रहे, फिर भी आखिर में क्या बोले? न मृत्यु न शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर न मित्रं गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम् शिवोहम्। ये सब जानकर भी हमारा क्या कमियां है? हम समझने क्यों, जैसे बोल रहे कि मैं कौन हूं, कहां से, हम दीदी जैसे सुबह रखे थे उनके कालांश में अमृत बला में, तो अहम निर्विकल्प जिसका विकल्प नहीं है, अहम निर्विकल्प निराकार रूप जिसका आकार नहीं है, विभोरी व्यापी सर्वत्र सर्व इंद्रियां, सर्व इंद्रिय हमारे अंदर में है, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्र थोड़ी ना होता है, मनोबुद्धि चित्त अहंकार, और क्या है? न बंधनं नैव मुक्तिर् न भीति, मैं बंधन का कारण नहीं और मुक्ति भी, हमेशा हम मुक्त है, जो धरती पर आए हैं तब मुक्त है, हमेशा मुक्त है। चिदानंद रूप शिव होम शिव, शिव होने से शिव पूजा करना, और उसके आखिर पश्चात जो है ब्रह्मत्व। क्यों? ना अभी हम कहां पे है, ना भूलोक में, उसके पश्चात भूवोलोक, भूव के पश्चात स्वलोक जाएंगे, स्व के पश्चात मह, मह के पश्चात जन, जन के पश्चात तप, तप के पश्चात सत्यलोक, और इस सत्यलोक के पश्चात जो है कुछ काम है, जो सद्गुण में बैठेंगे सत्पुरुष के साथ रहेंगे, जो नहीं है निचली हिस्सा आएंगे, और आगे जाएंगे तो ब्रह्मत्व का क्या है, भगवत गीता में लिखा है, ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निर्वतन्ति भ्यः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य जतः प्रभुति पशुता पुराणी। जहां जाने से हे अर्जुन, तुम जहां जाने से वापस नहीं आते है, उस जगह मैं हूं, यो ही है ब्रह्मलोक। हम हर प्राणी जा नहीं सकते, इसको काम है, जहां जीव है उससे ब्रह्म है, और इसी सब से हम मानुष को क्यों दिया गया ना, मानव जीवन में आगे ओर से जाएंगे तो मनुष्य तो अर्जन करेंगे, देवत्व अर्जन करेंगे, ईश्वर तो अर्जन करेंगे, और ब्रह्म तक पहुंचना ये हमारा धर्म है। क्यों? एक बात बोलना चाहता हूं, हमारा धर्म कैसे, हम इसलिए चपट के रहते हैं, नित्य नित्य वस्तु विवेक, दो मिनट सकता हूं, नित्य नित्य वस्तु विवेक, नित्य और अनित्य, ये अनित्य संसार में नित्य को नहीं समझ पाएंगे, और नित्य लोग भी अनित्य की ओर से नहीं दौड़ पाएंगे, ससीम असीम की ओर से जा रहे, असीम भी ससीम की ओर से प्रधावन कर रहे। यह अमृत फल विराग जो अमृत है, यह अमृत फल भोग विराग है, ये वैराग्य तो भी आएंगे, आसक्ति जब रहेगा तो तब नहीं होगा भी, ये प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ब्रह्म क्या है, भोलेनाथ क्या है, शिव जी कौन है, ये भी नहीं समझ पाएंगे, हम शिव होने से जब शिव पूजा करेंगे तब भी नहीं समझ पाएंगे, जब तक ऐसे ज्ञान नहीं होगा। यह अमृत फल भोग विराग उससे वैराग्यता, इसके बाद जो आएगा सटक संपत्ति, सम दम तितिक्षा उपरीति श्रद्धा और समाधान, और आखिर की जो चीज है मनुष्यतम मुमुखतम महापुरुष संशयम। अभी हम सभी आ रहे जितने भी है महापुरुष संशयम, पहला कदम है मनुष्यतम अर्जन करना, उसके पश्चात आएगा मुमुखतम मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष ऐसे नहीं होता है, मोक्ष ऐसे नहीं अपने आप हो जाएगा। जब आप इसी कर्म के ओर से चलेंगे, तो आज बहनों ने, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जी, ईश्वर विश्वविद्यालय के बहनों ने, राजयोग एडुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ओर से जो कर रहे हैं, सारा विश्व में 140 देश में जो भारतीय संस्कार, जो आध्यात्मिकता क्या है और प्रेम की भाषा क्या है, विश्व का जो वसुंधैव कुटुंबम को हम बोल रहे हैं, इसको कैसे विश्व परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये बहनों ने जो लग के कर रहे, हम लोग को जो बुलाए, जितने आचार्य महाराज सभी धर्माचार्य को बुलाए, यहां कोई भी मत पंथ के हो, वो संदेश दे रहे जो आप भी हमारे साथ मिलकर इसी मुद्दा उठाए, इस बीड़ा को आगे लेकर ये जगत का पूरा परिवर्तन का जो विचार रखे, इसके भागीदार बने, ये बहनों ने कर रहे। मैं तारीफ करता हूं बार बार, मैं बहुत तारीफ करता, क्यों, हमारी जो विचार है, हम शंकराचार्य की विचार है, हम वैष्णव, हम सभी को भी देखिए, इसीलिए मैं बोल रहे वैष्णव कमी नहीं करता, वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्यों, आप सभी वैष्णव है, क्योंकि इसी चर्चा में जो सनातन बोल रहे ना रामनाथ भैया जी, सच्ची सनातन है, हम युग युग से ऐसे है, सच्ची सनातन है, हम ऐसे ही है, जो इसी कर्म करेंगे, बैठने का, खाने का, सोने का, बात करने का, चलने का, जिस आधार पर हम चलेंगे वही है सनातन, जीवन का आधार तो सनातन है, ये जीवन की सही दिशा में ले चले, सही दिशा में चले। और भी कुछ बात बोलना था, समय भी पर हम चलना होगा, लक्ष्मी देवी कभी से खड़े हैं, मैं आपसे ये संदेश दे रहा हूं, फिर भी तारीफ कर रहा हूं, आप सभी भी आइए, आह्वान भी कर रहा हूं, जो भी किसी मत पंथ के हो, अभी समय इसी मुद्दे पर चल रहे, हम सभी मिलकर इस जगत को देखना और पूरा परम वैभव के विचार के सामने आना चाहिए, इसी ओर से हम आगे कैसे आए, इन्हीं दोस्तों के साथ मेरी वाणी को विराम करता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी महाराज, बड़े सुंदर विचार आप सुना रहे थे, अपने श्लोकों के द्वारा एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे थे, मन तो करता है सुनते ही रहें, लेकिन फिर थोड़ा सा इशारा देना पड़ता है, व्यवस्था है ये, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और उन्होंने एक ही सुंदर संदेश दिया कि हम सभी उस शिव के ही स्वरूप हैं, जैसे वो आनंदमय है, शांति का सागर है, कल्याणकारी है, शिवो हम अर्थात मैं आत्मा भी उस ईश्वर पिता की संतान उसी के समान हूँ, सदा संतुष्ट सदा सुखी, और जो उत्थान का आधार है वो भी जीवन के अंदर संतुष्टता है, जो हमें मिला है उसमें संतुष्ट रहें। श्री राम और रावण में यही तो अंतर था कि श्री राम को जो मिला उसमें संतुष्ट है, राज तिलक की तैयारी हुई तो भी ठीक है, और अगर वनवास मिल गया तो भी बड़े प्यार से माँ कौशल्या को कहते हैं, पिता दीन मोई कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी, तो ये है राम। और एक रावण है जो सब कुछ प्राप्त करके, कुबेर का खजाना, पुष्पक विमान, सब कुछ छीन करके, सुंदर नारी मंदोदरी होते हुए भी सीता माता के ऊपर बुरी नजर रखता है, यही अधो पतन, यही पतन का स्वरूप है। तो इसलिए हमें राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, उस राम राज्य को लाने के लिए श्री राम का स्वरूप, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जीवन में लाना है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय संत समिति, वैसे तो इनके काफी सारे स्थानों पर हैं स्थान, लेकिन हमारे नजदीक हांसी हिसार से आप आए हैं और अपने सुंदर विचार हमारे बीच में रखेंगे। बहुत ही व्यस्त इनका शेड्यूल था, लेकिन उसके बीच में से समय निकाल कर पहुंचे और बड़े प्यार से कल से हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध करती हूं अपने विचार रखेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
मूल मंत्र गुरु वाक्यम पूजा मूलम गुरु पदम ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति मोक्ष मूलम गुरु कृपा। घीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भोली वस्तु लखाई दे ऐसे हैं दातार। घीसा ये माया के फंद है या में हो रे अंध, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम श्रद्धे मंच पर विराजमान सभी संत महापुरुष को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों, आज का जो विषय है मानव और आत्मा और परमात्मा का जो चिंतन है उससे मिलन है वो कैसे हो, क्योंकि मानव जो उत्थान है उसके लिए चर्चा है। यहां पर हमारे को कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जहां पर महापुरुष जीव के ऊपर कृपा करते हैं, और जब जीव के ऊपर कृपा करते हैं तो कबीर साहब भी कहते हैं, मैं तो ही देखूं तू मोहे देख, और देखत देखत ऐसा देख। किसको कहा? आत्मा परमात्मा को कह रही है, मैं तो ही देखूं तू मोहे देख, और देखत देखत ऐसा देख, मिट जा धोखा दर्शे एक। क्योंकि पहले क्या था, देखने वाला और दिखने वाले दो थे ना। देखत देखत ऐसा देख, मिट जा धोखा दर्शे एक, गीसा संत कहे अलेख, गुरु देव को ऐसा सेवे जो सेवक ही गुरु होए। जब जीव उस स्वरूप को देखते देखते दसवें द्वार से जब पलट जाता है, सुबह बहन दीदी लक्ष्मी भी कह रही थी कि वो त्रिकुटी जब यहां से ध्यान लगा के और गुरु स्वरूप को देखते देखते उस निरंकार को देखते देखते जब जीव दसवें द्वार से पलट जाता है तो किसका स्वरूप बन गया? अपना ही तो हो गया ना, अपने आप को देख लिया, अपने आप को जान लिया। और हम किसके लिए आए हैं? अपने आप को जानने के लिए आए हैं, और इस जनाने का कार्य कौन करेगा? ये महापुरुष करेंगे। ये जब महापुरुष कृपा करते हैं ना, नजरो नजर निहाल, जब नजर लगती है तो जीव को पलट देते हैं। और हमने यहां बड़ा पहली बार ही लक्ष्मी दीदी का उपकार है इनका बहुत बहुत कि पहली बार ही यहां आने का अवसर मिला है, और यहां 24 घंटे ही भक्ति भाव के अंदर हमारे साथ एक समृद्ध लड़का आया है। वो भी सुबह कह रहा था मेरे को यहां बहुत अच्छा लगा, सत्संग भी प्रवचन भी और वातावरण भी, क्योंकि महापुरुषों के जहां चरण टिकते हैं वो जो धरती होती है वो बैकुंठ का टुकड़ा बन जाता है। और ये बैकुंठ का टुकड़ा है, महाराज जी भी चर्चा कर रहे थे कि बादल जब छूते हैं तो आवास कराते हैं, किसके साथ? उस परमात्मा के साथ मिलने का। तो ऐसा सुंदर जब अपने अवसर मिला है, क्योंकि उद्धव जी गोपियों को उपदेश देने के लिए चले, और वो उपदेश देने के लिए जब गोपियों के पास पहुंचे तो गोपियां उद्धव जी को समझा रही है, उद्धव मन नाही दस बीस, एक मन था सो तो श्याम संग गयो। नुके दस बीस मन नहीं है, एक मन था वो तो यहां महापुरुषों के चरणों के अंदर लग गया। अब इसको बदलोगे कैसे भाई? उपदेश दिया उन्होंने, इसलिए कहा कि ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे वश की नहीं है, ये तो प्रेम की, बंदगी तेरे वश की नहीं है, या तो होते हैं सर दे के सो दे, या तो होते हैं सर दे के सो दे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की।
तो गोपियां कह रही हैं तो प्रेम की बात है उदो, और जिन प्रेम किया तिन ही परब पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने इस परम पिता परमात्मा को अपने अंदर प्रगट कर लिया, और जिसने उसको प्रगट कर लिया वीरो उसका इस संसार के अंदर आना सफल हो गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, हकीकत में मस्ती नहीं है ये तो प्रेम की बात। तो भाई जो मस्ती जो चढ़ गई ना, जैसे नानक जी महाराज ने कहा नाम खुमारी नानका और चढ़ी रहे दिन रैन, ये जो नाम की खुमारी है ये महाराज जी का जो स्वरूप है, और यहाँ जो भक्ति भाव है इसको अपने हृदय के अंदर संभालो, और जब अपने मेरे ही में समागरी सुंदर साजन सांवरो, जब अपने हृदय के अंदर महापुरुषों का दीदार जो है वो बस गया तो बीरो हमारा इस संसार से आना सफल है। बोलो साधो सत साहिब।
बहुत सुंदर प्रेम रस में डुबो गए हम सबको और समय सीमा के अंदर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का, जिन्होंने हमें संदेश दिया कि जो प्रेम है वो क्या है, वो दिमाग का विषय नहीं है, वो दिल का विषय है। गोपियों के पास दिमाग इतना नहीं था पर दिल था, तो इसलिए उस प्रभु पिता को रिझाने के लिए जब हम उसे दिल से प्रेम करते हैं तो वहां वो कुर्बान हो जाता है। और अब मैं अनुरोध करती हूं स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज मुख्य संचालक प्रज्ञा धाम पन्ना मध्य प्रदेश।
देश के भिन्न भिन्न कोनों से पधारे हुए संत महापुरुष विद्वत जन आत्मी भाइयों और बहनों, अध्यात्म जगत में जिज्ञासा रहती है कि ब्रह्म कहते किसको है। मैं सामान्य रूप से सीधी भाषा में कहता हूं यस्मात् परो न अन्यत् किंचित्, जिससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। वेद में एक मंत्र आता है न त्वामान अन्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते, हे परमात्मा तेरे जैसा न कोई था न है न होगा। सत्यम जानम अनंत ब्रह्म, वही ब्रह्म है, वो प्रकृष्ट सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और अनंत है, उसको किसी सीमा के बंधन में नहीं बांधा जा सकता। परमात्मा धर्म और सत्य तीनों एक अर्थवाची समझ लीजिए। धर्म किसी पूजा पद्धति को नहीं कहते हैं। आजकल सनातन शब्द की बहुत अच्छी बहुत चर्चा चल रही है। हम मूलतः कह देते हैं कि हम सभी सनातनी हैं, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है सनातन कहते किसको है। सनातन वह है जो अनादिकाल से चल रहा हो, अनंत काल तक चलता रहे, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता। जो विचारधाराएं होती हैं वो मनुष्य प्रतिपादित होती है, संप्रदाय नष्ट होते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, संप्रदाय मजहब या रिलीजन की उनकी उत्पत्ति होती है और दूसरी विचारधाराएं उनको नष्ट कर लेती है। लेकिन जो धर्म वह है, जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म रहेगा, तब भी सत्य रहेगा, और सृष्टि से पहले भी परमात्मा था और बाद में भी परमात्मा रहेगा। इसलिए जो सत्य है वही परमात्मा है और जो सत्य है वही धर्म है। धर्म की विस्तृत व्याख्या ग्रंथों में की गई है, यहाँ समय नहीं है कि व्याख्या करूं, संकेत में इतना कह सकता हूं धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व गुहा में निहित है जो ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, एकमात्र धर्म के स्वरूप को वही जानता है। मैं एक थोड़ा सा कटु सत्य कहना चाहूंगा, जब हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं तो मुझे कुछ हंसी भी आती है। मैंने कहा जो सत्य है वही सनातन है। सत्य क्या है? मनु जी ने कहा वेदो अखलो धर्म मूलम, धर्म की मूल वेद है। क्या आज का तथा कथित हिंदू समाज वेद के अनुकूल आचरण करता है? क्या वेद की मान्यताओं को मानता है? वेद ने तो कहा कि एकम एव अद्वितीयम उपनिषद का वाक्य है, वेद कहता है एकमात्र परमात्मा ही उपास्य है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने वेद के सार तत्व को समझाया, उन्होंने कहा कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभूतेन भावन। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? जिसमें एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की भी उपासना ना हो। क्या हम हिंदू सुंदर हम हिंदू ये सच्चे हृदय से कह सकते हैं कि हम एकमात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करते हैं? हमारा हिंदू समाज 1200 जातियों और 1000 संप्रदायों में बटा हुआ है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सभी आपस में झगड़ रहे हैं, सब दूसरे की मान्यताओं का खंडन करते हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं स्वयं वेद के विपरीत हैं। वेद किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। यजुर्वेद में जो राष्ट्र वंदना है, आप ब्राह्मण 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 सच जायताम आराष्ट्र राजन्य सुर इस पे अति जायताम, ये भारत भी कर सकता है, पाकिस्तान भी कर सकता है, अमेरिका भी कर सकता है, रशिया भी कर सकता है, क्योंकि वेद उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की वाणी है जिसके समक्ष करोड़ों गैलेक्सियों वाली यह सृष्टि एक परमाणु के समान है। हमने परमात्मा को एक छोटे से दायरे में बांधा, हमने सनातन शब्द को एक छोटे से दायरे में बांधा। जिस दिन हम वेद के ज्ञान की महत्ता को समझेंगे, उस दिन हमारी सीमाएं भारत को पार कर समस्त सृष्टि को भी पार कर अद्वैत धाम स्थित होगी। जानते हैं जो आप कहते हैं ओम शांति शांति, वेद में शांति पाठ की शुरुआत कहाँ से होती है? देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपस शांति, वनस्पतिया शांति, औषधिया शांति। देवलोक किसको कहते हैं? जहां से करोड़ों गैलेक्सियां निकल रही है। हम पृथ्वी पर कुछ मान्यताओं को लेकर, कुछ व्यक्तियों को लेकर एक संप्रदाय बना लेते हैं और समझते हैं कि सनातन इतना ही नहीं, इतना ही है। सनातन इतना नहीं है। हम जितने अनंत की कल्पना करते हैं उससे भी परे जो अनंत परमात्मा है, पादवस्य विश्व भूतानि त्रिपादस्य अमृतादि त्रिपादुर्दुदेत पुरुषः, उस परमात्मा का ज्ञान वेद है। और वेद का उल्लंघन करने वाला सच्चा सनातनी नहीं कहला सकता है। हो सकता है सनातनी कहला सकता है, क्योंकि भारत में जो पैदा हुआ है वेद के किसी न किसी अंश को ले सकता है, लेकिन पूर्ण अंशों में हम ले चलेंगे तो हम पूर्ण शुद्ध सनातनी है। पूर्ण अंश में हम पालन नहीं कर सकते हैं, हम अपनी सांप्रदायिक कट्टरता को प्राथमिकता देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंश रूप का ही पालन करने वाले सनातनी कहे जा सकते हैं। मेरी बातें कुछ कड़वी लग सकती है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं के अनुयायी मंच पर बैठे रहते हैं और ये मेरी बात सब जगह पहुँच रही होगी। ज्ञान सृष्टि को धारण करने वाला होता है। वेद में कहा गया है कि सत्येन उत्पत्ता भूमि, पृथ्वी किससे टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ज्ञान है, वेद ही सत्य है। और इसलिए आज आवश्यकता है कि वेद के शाश्वत सत्य को हम धारण करें। देखिए हमारा समाज कितनी संकीर्णताओं से गुजर रहा है, मैं उसके थोड़े से एक थोड़ी सी झलक दिखाना चाहूँगा, और उसको सुधारना बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कह दिया वेद केवल एकेश्वरवाद की करता है, इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभूतेन भावन। हे अर्जुन, क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, यस्मात् क्षरातीत हम अक्षरात् अपि च उत्तम, केवल वही उत्तम पुरुष परमात्मा है और केवल उसी की उपासना करो। हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं बैठे हैं। आपस में कहेंगे कि नहीं, हमारे इष्ट बड़े हैं, तुम्हारे इष्ट छोटे हैं। दूसरों के इष्ट को छोटा बनाते बनाते ये हिंदू समाज न जाने क्या क्या कल्पनाएं करने लगा। हम जातियों में बट गए। चातुर्वर्ण्य मया सिष्टम गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है, कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। जन्म के आधार पर कोई जाति निर्धारित नहीं की जा सकती। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गृहस्थिन, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में जो एकत्व देखता है वो पंडित कहलाता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं। वेदांत का एक सूत्र है अपिच स्मृते, आप देखिए मैं नाम लेकर क्या कहूं। इस सूत्र की व्याख्या सभी आचार्यों ने क्या की है। हम सूत्र को यदि चलता फिरता स्मशान कहेंगे तो हिंदू समाज एक झंडे के नीचे कहां से आएगा, कहां से प्रेम पड़ेगा? जो वेद की वाणी कहती है तत्र कहम कह सो का यू एकत्म अनुपस्थित, हम सब में एकत्व की बात करने की देखने की बात करते हैं, लेकिन हम भेद बनाए बैठे हैं हजारों जातियों का। एक जो हमने पौराणिक व्याख्याओं के आधार पर मान्यता गढ़ ली है, परिणाम क्या हुआ? हजार वर्षों से ये देश पर दलित रहा, न जाने 6 करोड़ लोग मारे गए, न जाने कितनों के मस्तकों से मीनारे बना दी गई, विदेशी अक्रांता आए यहाँ की संस्कृति को मिटाते गए, यहाँ के लोग स्वयं नहीं जान पाए कि उनके पास वेद का ज्ञान था लेकिन उसको उन्होंने प्रसारित नहीं किया। जो देश सारी मानव जाति को कहता है सर्व आशा मम मित्र भवंति, जिस देश में वेदों का ज्ञान अवतरित हुआ, जिसके लिए मनु जी ने कहा कि एतद् देश प्रसुप्तस्य से साक्षात् अग्रज जन्मना, हम एक छोटे से दायरे में आज सिमट करके रह गए हैं। इसका कारण यह है कि हमने वेद के ज्ञान को छिपा दिया, हम जातियों में बटे, संप्रदायों में बटे, और आज आवश्यकता यही है कि हम अपनी भूलों को सुधारें, वैदिक ज्ञान को पुनर्जीवित करें, गुरुकुलों की स्थापना करें। हम करोड़ों करोड़ों के मंदिर तो बना देंगे लेकिन वैदिक ज्ञान को फैलाने का प्रयास नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, ध्यान के द्वारा ही उस परमात्मा को जाना जा सकता है। आप सारा युग दर्शन पढ़िए, सारी उपनिषद पढ़ लीजिए, वेदांत पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए, सबका एक ही सार आएगा, गुहाम प्रविष्टो आत्मनो ही तत् दर्शनात्, परम गुहा में प्रविष्ट हुए बिना ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। और इसलिए ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान को हम जितना बांटेंगे, वेद ने कहा है सत है समाहर, 100 हाथों से बटोरिए, 1000 हाथों से लुटाइए। यदि हम ज्ञान को छिपाते हैं तो ये ज्ञान का छिपाने का अभिशाप ही तो हमें ले डूबा है कि एक समय में 6 महाद्वीपों में वैदिक संस्कृति थी, सर्वत्र वेद का स्वर गूंजता था। आज हम सिमटते सिमटते भारत में भी असहाय की अवस्था में है। ये हमारे अपराधों का दंड है। हमने वेद ज्ञान को छिपाया, हमने सबके अंदर एक चेतना को नहीं देखा जिसके लिए वेद का उपदेश है, तत्र कह मोह कह सो का युग एकतम अनुपस्थित। हम ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में, सब में एक चेतना देखने की बात करते हैं लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो 1000 जातियों में बटकर दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। इन भूलों को सुधारे बिना हमारा कभी वैदिकत्व का सूर्य कभी चमक नहीं सकेगा और अध्यात्म का सच्चा ज्ञान सामने नहीं आ सकता। इसलिए देश के सामने आवश्यकता है कि सभी वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दें, सांप्रदायिकता के द्वेष को, अग्नि को कम करें। सांप्रदायिकता जब तक रहेगी अध्यात्म का सच्चा स्वरूप निखर नहीं आएगा। अध्यात्म का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप सांप्रदायिक रूढ़िवादता से, कर्मकांडों से सभी परे है। इसलिए वेद का ज्ञान किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं कर सकता, वो स्वतः प्रमाणभूत है। दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं वो मनुष्यकृत हैं, परमात्मा वेद मनुष्यकृत नहीं है, इसलिए दर्शन शास्त्र कहते हैं अपरिषोत्तम वेदानाम तत्कर्तु पुरुषस्य अभावात्। अपुरुषे वेद की वाणी को हम प्रसारित करें, सच परमात्मा जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है उसको जाने, स्वयं को जाने, जिसके लिए तारतम वाणी कहती है बिन चिन्हे आप पार ब्रह्म को कौन कहे में जानो। जीवन का परम लक्ष्य क्या है, पहले आप पहचानो, हम स्वयं को जाने। जब तक अपने को नहीं जानेंगे कि को हम कुतः आगतो वस्य देहांते प्रलयांते वा कुत्र गमिष्यामि, तब तक हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे। प्रणाम जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज, आपने हमें वैदिक शिक्षा, सनातन संस्कृति और सनातन संस्कारों की स्मृति दिलाई। सचमुच में हमारे जो संस्कार हैं वो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। घर के अंदर बच्चों के संस्कार, परिवारों के संस्कार, माता जीजाबाई जिन्होंने बचपन से शिवाजी को संस्कार दिए, जब वो छोटे से थे 6 के तो माता जीजाबाई उनको लोरी सुनाया करती थी कि ये देश दुखी एक वीर बिना रणधीर बिना, तू राम कृष्ण का वंशज है, वो तब थे लेकिन तू अब है। वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, 6 का बच्चा, कुछ समझ नहीं रहा लेकिन उसे ऊर्जा दे रही है कि तू ही श्री राम का रूप लेकर आया है, तू ही श्री कृष्ण का रूप लेकर के आया है और तू ही इन मुगलों से भारत को स्वतंत्र कराएगा। तो सचमुच में ये संस्कार कितना बड़ा काम करते हैं। शिवाजी महाराज ने बड़े होकर के देश के लिए कितना काम किया, और उनके जीवन का एक आख्यान आता है कि जब उन्होंने फतेहपुर को जीत लिया तो वहां के जो सुल्तान थे वो हार गए, और उनकी जिसको भी हरा देते थे उसकी सारी संपत्ति, उसका सब कुछ जीतने वाले का हो जाता था। तो शिवाजी महाराज के जो सिपाही थे उन्होंने आकर के बताया कि महाराज आपके लिए हम एक बहुत सुंदर सौगात लेकर आए हैं, जो जीती है आपने तो धन दौलत जमीन जायदाद तो थी, लेकिन एक सुंदर युवती जो फतेहपुर के सुल्तान की पुत्र वधू थी, तो कहा ये आपके लिए लाए हैं, क्योंकि सब कुछ राजा का हो जाता है। जैसे ही शिवाजी महाराज ने उनके दर्शन किए, वो बेचारी थर थर कांप रही थी, उसने उनको झुक करके प्रणाम किया, माता कहकर के प्रणाम किया कि आप मेरी मां हैं, और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इन्हें सुरक्षित इनके संबंधियों के पास इनके शिविर में छोड़ करके आओ, इन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। ये है हमारे इस भारत देश के प्राचीन संस्कृति के संस्कार, जिनके धारण करने से ही फिर से उत्थान हो सकता है। और अब मैं अनुरोध करती हूँ महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 साध्वी नीताजी महाराज, जो हमारे बीच में सूरत से पधारे हैं, आपसे नम्र अनुरोध है अपने जीवन के अनुभव हमारे सामने रखेंगे।
सभा में उपस्थित सभी प्यारी आत्माओं के हृदय में विराजमान श्री प्रभु को मैं वंदन करती हूँ। मैं तो एक विद्यार्थी हूँ और ज्ञान के सागर में आज जो शब्द मिले हैं, वही शब्द को मेरे जीवन के साथ जुड़ने चली हूँ। हमारी भूमि पर श्री राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, कितने आध्यात्मिक गुरुओं ने हमें यह धरोहर दी है, और इसीलिए हम धन भाग्य है। और धन भाग्य इसीलिए भी है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। ये मनुष्य जीवन पशुवत जीना है या ईश्वर की ओर चलना है, यह हमारे हाथ में है। यहाँ पे उपस्थित जो है वह तो उच्च कोटि के मनुष्य है, क्योंकि हमने ईश्वर की ओर एक कदम रख दिया है। मुझे यहाँ ज्ञान की भिक्षा में दो शब्द मिले, एक प्रभु ने बताया मुरली। पहले यह शब्द को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण जी को प्यारी है बांसुरी। वो बांसुरी क्यों प्यारी है? क्या वो बजाते हैं इसीलिए? नहीं, यह बांसुरी खाली है, और खाली है तभी अंदर से मधुर ध्वनि आती है जो हमारे चित्त को आकर्षित करती है। हमारा मन भी है वो मुरली है, बांसुरी है, उसको खाली करना है। जो राग से भरा है, जो क्रोध से भरा है, उसको खाली करना है। कैसे करेंगे? जो जिसके साथ अनबनाव हुए है, जिसने हमारे दिल को कलोचा है, जो हम अब भी हमारे मन में लेकर चल रहे हैं, बस चित और दिल दोनों से इनको माफ कर दीजिए और खुद भी निर्विकार हो जाइए, खाली हो जाइए वही बांसुरी की तरह। तभी तो हमारे अंदर से, हमारे तानपुरे से एक सुरीली ध्वनि आएगी जो ईश्वर को प्रिय होगी। दूसरा, देवी जी से मुझे शब्द मिला मक्खन। श्री कृष्ण को मक्खन बहुत प्यारा है। मान लो हमारा शरीर गागर है, लेकिन हमें शरीर को मथना है। जाप से मथो, ध्यान से मथो, योग से मथो, या फिर साधना से मथो, शरीर को मथो। इतना मथो के अंदर से एक सत्व निकले, और वही सत्व प्रभु को प्यारा है, वही सत्व ईश्वर को प्यारा है। बस हम यही सत्व के लिए ही जी रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर मुझे ये अच्छा लगा कि हमें ज्योत तो जला दी है, लेकिन एक ज्योत से कुछ नहीं होगा, हमें सबको साथ लेकर ज्योत जलानी है। और वही ज्योत से जो सोए हुए हैं, जिसको अपने मनुष्य जीवन का कोई आधार समझ नहीं आ रहा है, उनको जगाना है, उनके अंदर ज्योति जगानी है। और हम ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था जो है, जो आदर्श ईश्वरीय और ले चलती है, उसके साथ मिलकर यही ज्योत जलाएंगे और आगे जाएंगे। सनातनी हम हैं, हम जन्म से सनातनी हैं, हमारी धरोहर से हमें सनातन मिला है, उसको फैलाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद महामंडलेश्वर श्री श्री 108 स्वामी नीता जी, जिन्होंने बहुत मीठे प्यारे शब्दों में श्री कृष्ण जी का जो श्रृंगार है, मुरली विनम्रता, मक्खन सार, मुरली मक्खन मोर मुकुट, मटकी फोड़ना, ये जो सारे अलंकार हैं, ये हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, उनकी तरफ इशारा किया। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करती हूँ, पटेल नगर का एक ग्रुप जो दिल्ली से आया है, वो फिर से अपनी सुंदर प्रस्तुति देंगे।
कन्हैया तेरो जे कन्हैया मोहे लागे बड़ो प्यारो
लागे बड़ो प्यारो लागे बड़ो प्यारो
बलि दाऊ जी को भैया मोहे लागे बड़ो प्यारो
लागे बड़ो प्यारो लागे बड़ो प्यारो
का बहुत बहुत ताली बजा करके आइए दीदी आपका स्वागत करेंगे। छोटी बच्ची जिसने डांस किया है कितना सुंदर संदेश दिया, मैया तेरोरी कन्हैयो मोहे लागे बड़ो प्यारो। सबको प्यारा लगता है ना श्री कृष्ण। अभी अभी जन्माष्टमी बीती है, हम सब ने बड़ी सुंदर सुंदर श्री कृष्ण की झांकियों का भी आनंद लिया है। श्री कृष्ण का जीवन इतना प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि उसके जीवन में सदा आनंद का उत्सव है। कितनी भी गंभीर परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, नाचते रहते हैं। एक बार करण ने उनसे शिकायत की कि मैं सूर्य पुत्र और मुझे लोग कितना अपमानित करते रहे सुत पुत्र कह करके, और जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो मुझे वहां से भी भगा दिया, कितना मेरा अपमान हुआ है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपनी बात करते हो, जरा मुझे भी देख लो, क्या मेरा कम अपमान हुआ है? जन्मते ही तो मुझे माता पिता से अलग कर दिया, फिर नंद बाबा यशोदा मिले वो भी छूट गए, फिर गोकुल भी छूट गया, सब राधे भी छूट गई, मथुरा भी छूट गई, सब कुछ छूटा, लेकिन फिर भी मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। केवल तुम में और मेरे में यही फर्क है कि तुम बार बार उसे सोचते हो। तो श्री कृष्ण की जो झांकियां हैं वो हमें संदेश देती हैं। मृत्यु जैसी भयंकर परिस्थिति नाग के ऊपर भी नाच रहा है। एक गाली पर मृत्यु दंड दिया जा सकता था, 99 गालियां सहन करता है वो श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से उनके जीवन की एक एक झांकी मानवता को बहुत सुंदर संदेश देती है, और इन बच्चों ने भी वही संदेश हमें दिया। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री श्री 1008 स्वामी राघवानंद जी महाराज, जो करनाल से हमारे बीच में आए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप हमें अपने अनमोल विचारों से लाभान्वित करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप कल से प्रारंभ कर रहे हैं। कल एक बात कही थी, हीरा कीचड़ में गिरा है, बार बार वो कीचड़ में गिरता है, और देखता है कि मैं तो कीचड़ में ही रहने वाला हूं। बड़ी सुंदर ढंग से कल किसने यहां इस बात को रखा, वो हीरे की बात आपकी ही बात थी। हमारे परम पवित्र महान लेखराज जी वो भी हीरे का ही व्यापार करते थे, और उस हीरे की कीमत, वो हीरा देवो भूत्वा देवम एजेत, शिवो भूतवा शिवो में जित, वो आप ही रहा है, आप अपने को जैसा है वैसा नहीं देख रहे, अन्यथा देख रहे। मैं जैसा हूं वैसा मुझे देखना, यथार्थ देखना है। क्या आप शरीर है? आप शरीर है क्या? आप शरीर से अलग अपने को देख ही नहीं पा रहे। जब आप आए शरीर के साथ, आपको बड़ा महान संबोधन दिया था कि बच्चा तो भगवान का रूप है, बच्चा तो भगवान का रूप है। आप भगवत्ता को लेकर आए थे, ध्यान देना, राग द्वेष ईर्ष्या ये सब यहीं से आप पर उड़ी हुई धूल है। आप वो नहीं है। देह के साथ संबंध जोड़कर हम पतन की ओर जा रहे हैं। उत्थान का अर्थ है ऊपर उठो, उत्तिष्ठत, जागृत, प्राप्य वरानि बोधात्। आज बड़ा भाग्य का विषय है हमारा। मनोरमा जी, शायद दो तीन वक्ताओं ने बड़ा सुंदर कहा, एकता का संदेश दिया। मोदी जी भी कहते एकता, सबका साथ, सबका विकास। इस रहस्य को जरा समझो। एक अज्ञानता के कारण हम अपने को अन्यथा समझ रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे अपने को नहीं समझ रहे। वर्ड का एक ही क्वेश्चन है, हुआ एम आई, मैं कौन? और जहां तहां एक ही बात होती है, जब पूछना है भाई आप कौन है, लेकिन जानते नहीं आप कौन है। आप जिस देह को लेकर चले हैं, क्या देह आप हैं? मैं कभी एक विनोद में बात करता हूं, गणेश जी का वाहन क्या है? हाँ जी, आपका वाहन क्या है? अब यहां हम खतरे में पड़ गए। अरे गणेश का वाहन चूहा है, तो आपका वाहन शरीर है। आप शरीर नहीं है। और अंततगतवा हम संकेत करते हैं, तीन का टूटा रिश्ता छूटा। देह हमारा कितनी देर का है? स्टेज पर हम सदा के लिए नहीं है, शरीर में हम सदा के लिए, फिर हम क्या है? कौन सी मैं, कहां से आई, किसने ये सारी सृष्टि बनाई, यही तो मेरा भ्रम मिटा दे आत्म रस के पीने वाले, रस तो पिला दे ब्रह्म ज्ञान में मस्त बना दे। आप दुनिया की खिंचाखींच सेवा यहां आते हैं, यहां आपको शांत लगता है, ध्यान में बिता। ध्यान का अर्थ क्या है? सिर्फ आपका होना। जितनी मान्यता है उससे अपने आप को गलाना, अलग करना। यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव। अरे भाई आप शरीर नहीं है, इसलिए कहता हूं गणेश का वाहन चूहा है, हमारा वाहन शरीर है। हम न शरीर थे न हम शरीर रहेंगे, शरीर में रहते हुए भी आप चेतन है। यथार्थ दृष्टि का अर्थ ही है, जो जैसा है उसे वैसा जानना। आपका आपका होने, एक बहुत सुंदर बात कही, दुनिया में बड़ी उसने दुनिया ने बड़ी उसने दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने आपने आपसे मुलाकात कर ली। बहुत जन्मों से बिछड़े थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लिखे। और याद रखना, एक का चाहिए ना तो प्रेम चाहिए, और यह वो प्रेम का जागृत उदाहरण है। प्रेम में दो नहीं होता है, सेवा होती है की नहीं जाती। जब तक कर्तत्व है तब तक बंधन है। हम कर्ता मानते हैं तो भारी हो जाते हैं। हम किस चीज के कर्ता भाई? क्या इस देह की रचना आपने की है? जिस सुंदर शरीर पर हम लट्टू हो गए,
आज जिसे देखो मोबाइल, मोबाइल पे लट्टू हो गए, ऐसे हम देह पे लट्टू हो गए, लेकिन अपने आप पे लट्टू कब हो गए? एक साधारण सा संकेत दूं आपको, एक मोबाइल है और एक आपका शरीर है। मोबाइल में रेंज नहीं है, क्या काम करेगा बोलो? और आप में श्वास नहीं है, मोबाइल में रेंज नहीं है और आप में श्वास नहीं है, दोनों क्या हो गए? डब्बे। ये दोनों को चला कौन रहा है? वो चलाने वाले अब हीरा आप हैं। और देखो ना, जिस तनाव से दूर होने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, लेकिन निद्रा में हम सहज ही तनाव से दूर होते हैं। निद्रा समाधि स्थिति ही, निद्रा आपकी समाधि है, हम न तुम दफ्तर गुम। इसलिए मेरे भाई, आप जरा अपने भीतर ध्यान दो कि आप कौन है, कहां से आए, किस लिए आए, आपका मकसद क्या था, आपका दृष्टिकोण क्या है, आप कहां खड़े हैं। यदि आप आत्मा पे खड़े हैं तो आप परमात्मा में खड़े हैं, और देह पे खड़े हैं, देह तो मलमूत्र का गड़ा है, अज्ञानता में इसमें जीव पड़ा है, देह आपका वास सदा का नहीं है। जैसे स्टेज से हम उतरेंगे, देह से भी हम उतरेंगे। तो देह धारण किसने किया? जिसने देह को धारण किया, धी धारयती, वो धर्म है, वो सनातन है, वो सदा है। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, जिसका तीनों काल में बाध नहीं होता, यानी जिसका अभाव नहीं होता। देह का तो आपका निद्रा में अभाव होता है, क्या आपका अभाव होता है निद्रा में? देह नहीं, आप तो है ना, आप नहीं ऐसा कहीं भी नहीं है, आपका अभाव ही नहीं होता, आप सनातन हैं। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। बड़ा सौभाग्य का विषय है आज की इस अशांति के युग में और वर्ल्ड में छाया है आपका ये प्रेम परिवार, और जो आए वो छाया में अपना अपने शांति का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, आप जितने मन से एकाग्रता ही एकता है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समा, द्वैत ही तो जगत है। आप अद्वैत है, आप सदा रहने वाले सदा शिव है। सच्चा स्वरूप अपना शिव ध्यान करके देखो, सब शक्तियां तुम्हारी, सारा जगत तुम्हारा। देखो विचार करके सब मन का है पसारा, स्वामी जगत के तुम थे फिर ज्ञान क्यों बिसारा। किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है तो यहां आओ। इत्थे आ, 84 तेरी कट्टी जाएगी। इत्थे किथे? स्वयं पे। देवो भूत्वा देवम यजत, भगवान बनकर भगवान की पूजा करो। ऐसा यदि कोई संदेश है तो यहां है, भाग्य है। आज हमारा यथा राजा तथा प्रजा, शिवाजी की भी बात आई थी, मूल्यवान है संस्कार और आपका दृष्टिकोण। इस विषय को मनोरमा जी, रामनाथ जी, यहां तो एक से एक है, ये आपका भाग्य है, और आप अपने भाग्य के कृतार्थ करें। मैं समय को अधिक बढ़ाना नहीं चाहता, समय के पहले बोलना मैं कहता हूं सही संदेश का पालन है। हरि ओम तत्सत।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज का, जिन्होंने समय सीमा के अंदर बहुत सुंदर संदेश दिया है कि मानव जीवन के अंदर किस प्रकार से प्रभु प्रेम और जो जीवन मूल्य हैं वही उसके उत्थान का सबसे बड़ा आधार है। हम देखते हैं कि जीवन मूल्य सबसे बड़ी शक्ति होती है इंसान के जीवन के अंदर। जब श्री राम और रावण का युद्ध होने जा रहा था,
तो उस समय रावण अपने विमान पर आया और श्री राम जी नंगे पांव थे। उनके मित्र विभीषण ने जब ये दशा देखी तो बड़े अधीर्य हो गए। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय उ अधीरा, कि श्री राम तो नंगे पांव हैं और रावण इतना महाबली और इतने बड़े विमान पर आया है। उसकी इस दशा को देख करके श्री राम जी ने उन्हें एक संदेश दिया जो आज के मानव के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है। श्री राम जी ने कहा कि विभीषण, हे मेरे मित्र, मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ लोहे और लकड़ी का नहीं होता, वो तो एक अलग ही रथ होता है। उस रथ के सौरज धीरज ये दो पहिए हैं, सौर्य भी हो लेकिन धीरज भी हो, जो श्री राम में था। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उस रथ के सत्य और शील ये दृढ़ ध्वजा और पताका हैं। बल, विवेक, दम और परोपकार, ये चार घोड़े हैं उस रथ के, और इन घोड़ों को जोतने वाली जो रस्सी है वो है दया, क्षमा और समता। और उस रथ का एक चतुर सारथी भी है, ईश्वर भजन, परमात्मा का चिंतन ही वो शक्ति देता है जो उस रथ को चलाता है। और उसके साथ साथ उसका कवच भी है, अपने गुरुजनों का सम्मान, बड़ों की सेवा, ये मूल्यों का रथ जिसके पास है वो रावण तो क्या, संसार के बड़े से बड़े शत्रु को भी जीत सकता है। और आज मानव के उत्थान के लिए इसी रथ की हमें आवश्यकता है, हमारे युवाओं को आवश्यकता है, हमारे बच्चों को आवश्यकता है इन जीवन मूल्यों की। और अब मैं अनुरोध करती हूँ महामंडलेश्वर आचार्य डॉक्टर गोपाल खेत्री जी, जो कलकत्ता से हमारे बीच में आए हैं।
ओम शांति। पहली बात, मैं मंच में उपस्थित सब महात्माओं को नमन करता हूं और मंच के आगे सब आत्माओं, पवित्र आत्माओं को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। पहली बात, मैं तो महामंडलेश्वर नहीं हूं, मैं अपने को अलंकार से नहीं सजाना चाहता हूं। अगर अलंकार से सजाना हो तो अपने चरित्र को अलंकार से हमें सजाना है। जो चरित्र, जो अलंकार आज ये ब्रह्मा कुमारी में देखता हूं, वो हमारे गुरुजी संत कवि भवा पागल, वो अपने नाम के आगे कोई अलंकार नहीं पसंद करते थे। उनके नाम के आगे पत्थर में हमने, हमारी मंदिर में उन्होंने जो आश्रम बनाने को हमें आदेश दिया था दीघा में समुद्र किनारे में, मैंने श्री श्री बैठा दिया नाम के आगे। तो उन्होंने कहा हमको, मेरे नाम को बिगाड़ दिया, पागल, मैं तो पागल हूं, ईश्वर के नाम में पागल हूं, यही हमारा टाइटल है, मैं पागला हूं, पागला पागला, मैं उनके चरणों में समर्पण किया हूं, यही हमारा टाइटल है। तो आचार्य डॉक्टर ये सब तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है। हमारा क्वालिफिकेशन है, हम मनुष्य, मानव है, मानव धर्म, यही हमारा सब कुछ है। एक ही धर्म है, वो मानव धर्म। दुनिया में जितने धर्म अलग अलग भले ही नाम है, ईश्वर के अलग अलग नाम है, काली, कृष्णा, अल्लाह, रसूल, लेकिन एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। तो आज का विषय है, विषय से बाहर नहीं जाऊंगा, आज का विषय है अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान। अध्यात्म क्या चीज है? जैसे एक वृक्ष, उसमें पानी सींचने से, पानी सींचने से वृक्ष बड़ा होता, फल देता है, और पानी, जल और रोशनी, मिट्टी, सब कुछ अपने आप ही मिलती है। लेकिन उसमें एक चीज वृक्ष के फल देने में सबसे बड़ा भूमिका होती है, क्या? वो सार होता है ना, जिसको मैन्यूर बोलते हैं। हम बंगाल में पढ़े हुए हैं इसलिए जरा सा लटपटा लगता है हिंदी। मैन्यूर क्या बोलते हैं? खाद। थैंक यू। खाद डालने की बहुत जरूरत है। वो खाद क्या है? वो खाद ये जो हमारे संत लोग हैं, ये संत अध्यात्म जो चीज है वो मनुष्य में साधारण मानव को सबको दें। ये वृक्ष जो है, वृक्ष जैसे तैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन जल मिलने से, लेकिन ये सार मिलने से, ये खाद मिलने से ये वृक्ष बढ़ता है। वो खाद क्या है जो हमारे ये संत सब में है, और वो ये सिखाते भी हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं जो सजाओ अपने को नहीं अलंकार से सजाओ, ये दस गुणों के अलंकार से सजाओ। वो क्या अलंकार है जो ये ब्रह्मा कुमारियों में हम देखते हैं? नम्रता, धैर्य, सहनशीलता, कर्तव्य, न्याय, सरलता, सत्य, आनंद, आत्महारा, क्षमा। ये दस गुण यही है अलंकार, और ये दस गुण हम सब में, सब धर्म में, सब साधु महात्मा ये है। लेकिन इसको बढ़ाना, बढ़ाने से खाली सिर्फ हमारे एक मंच में, एक ऑडिटोरियम में करना काफी नहीं है। बेंगलोर में मैंने श्री श्री रविशंकर जी से कहा था, आप इसको अगर सड़क पर उतारे रैली रूप से, बहुत बड़ा काम हो सकता है। लोगों के अंदर हजारों लोग हैं, 90% बाहर है, ये सब नहीं सुनते हैं, इनको पता नहीं है, उनके बीच में इसको प्रचार करें। तो मैंने कलकत्ते में शुरू किया था ये ऑल फेथ, आज भी चल रहा है। ब्रह्मा कुमारियों वहां के, कलकत्ता के किरण बहन जी हैं, और इन लोग योगदान करते हैं। बंगाल के सब साधु महात्मा, सब आश्रम, कम से कम 50 आश्रम योगदान करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा इस मंच से, इस ग्लोबल मंच से, जो ये ब्रह्मा कुमारी जो काम करते हैं, करती हैं, तो इनके द्वारा इसकी चीज ये रैली रूप से हर शहर में इसका बढ़ावा हो, इसका स्थापना हो, वर्ल्ड ब्रदरहुड जिसको कहते हैं हम, ये चीज की स्थापना हो। तो इतना ही, समय से कम समय में हम चाहते हैं हमारा वक्तव्य खत्म करना। ये भी बहुत बड़ा संयम, और ये भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है जो, और सब जो संत महात्मा हैं उनको सुनना है, हमें लेना है, उसके बाद उसको बांटना है। बस मैं इतना ही कह के हमारे बाक पुष्पांजलि को विश्राम देता हूं। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। जो हमारे कहने में कोई गलती हो, हमें क्षमा सुंदर दृष्टि से क्षमा कीजिएगा। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री आचार्य जी। कह रहे थे कि मेरे नाम के आगे कोई उपाधि ना लगाई जाए, ये भी एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है। तो इसलिए आचार्य डॉक्टर गोपाल खत्री जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर संदेश दिया कि जीवन में सबसे आवश्यक है जीवन मूल्य, और 10 मूल्य उन्होंने बताए, गुण बताए, जो धर्म के भी 10 लक्षण हैं, और उन सबको धारण करने के लिए केवल मात्र अध्यात्म है, मेडिटेशन है, क्योंकि परमात्मा गुणों के सागर हैं, और उनके साथ जब हम मन को जोड़ते हैं तो ये सभी गुण जीवन में स्वतः ही भरते चले जाते हैं। इसलिए जहां जहां से भी आप सब आए हैं, हम ये नम्र अनुरोध करेंगे
कि 3 दिन का जो मेडिटेशन शिविर है उस ईश्वर पिता को कैसे याद करें, कैसे मन को उनके साथ जोड़ें, जिससे जीवन में सब सद्गुण सब मूल्य भर जाएं, तो ऐसा प्रयास हम आशा रखते हैं आप अवश्य करेंगे। मैं अनुरोध करती हूँ राजयोगिनी डॉक्टर बीके बिन्नी बहन, जो राजयोग एक्सपर्ट हैं और हेडक्वार्टर माउंट आबू में ही रहती हैं, वो भी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगी। और अब मैं अनुरोध करती हूँ अगले वक्ता से, काजी मौसम अख्तर जी, जो पद्म श्री अवार्ड विजेता हैं और चांसलर हैं जाधवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता के, तो आपसे अनुरोध है कि चंद मिनट में अपनी शुभ भावनाएं हमारे बीच में रखेंगे।
ओम शांति। आदरणीय पूजनीय साधु संत महामंडलेश्वर महत्ता जो मंच पे बैठा हुआ है, सामने जो बैठे हुए हैं, हमारा जो आत्मा है उसका अतीय है और शांति का प्रचारक, सबका धन्यवाद अभिनंदन। खास करके अभिनंदन दे रहे हम, शुक्र गुजार है हम ब्रह्म कुमारी का जो अथॉरिटी हमको इनवाइट किया, इज्जत दिया, कुछ बोलने का मौका दिया, हम उसका आभारी हूं। हमको हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता, इंग्लिश बंगाली आता है, तो भी कोशिश कर रहे हिंदी में बोलने का। आज का जो टॉपिक है उसके अनुसार हम बात करेगा, समय कम है। जो बच्चा है जो भूखा है, 3 दिन नहीं खाया है, बच्चा रो रहा है रास्ता में फुट का सामने, पुजारी है मंदिर में जा रहा है, मौलाना मौलवी है मस्जिद जा रहा है, जाजक है गिरजा में जा रहा है, कोई देखा नहीं उसका तरह, वो तड़प रहा है, उसका भूख है, मंदिर में चला गया, मस्जिद में चला गया, गिरजा में चला गया, इंसानियत खो गया, ह्यूमनिज्म मानव धर्म बर्बाद हो गया। हमको एकदम विश्वास है भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड सब नाराज हो जाएगा, ऐसे मंदिर में जाएगा तो, ऐसे मस्जिद में जाएगा तो, ऐसे गिरजा में जाएगा, ये चल रहा है हम लोग का सोसाइटी में, सब है, इंसानियत नहीं है, प्यार नहीं है, इसलिए शांति भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, सुख नहीं है। ये भारत क्या है, 5000 बरस पहले ये भारत हम लोग का जो स्पिरिचुअल जो सेंस है इसका सूची का घर है, यहां से पैदा हुआ पूरा दुनिया को, वो जो हम लोग के स्पिरिचुअल जो भावना ये भारत से स्टार्ट हुआ था, हमारा देश से। आज अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप्ड शक्तिशाली देश हो गया, ऐसा कुछ मानते हैं हम लोग, आप ठूट कर देखिए, दुनिया का सबसे ज्यादा मेंटल पेशेंट अमेरिका में है, यूएसए में है, ठूट कर देखिए, लिस्ट बोल रहे हैं कुछ, इतना तरक्की हुआ साइंस का, हम लोग इतना खुशहाल में है, तो देखिए ना सब साइंस है सब, तो साइंस सुखी नहीं हम, कोई सुखी नहीं है, क्यों ऐसा हुआ, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, शांति नहीं है, कहीं खो गए हो, क्यों खो गए, क्या कसूर किया हम लोग, इतना तो धर्म धर्म करता है, ए भारत वर्ष पुण्य भूमि है धर्म का, धर्म क्या होता है, कैसे धर्म का धर्म पैदा हुआ दुनिया में, पहले समझना चाहिए, आज का नहीं, हम लोग का देश में धर्म आया 5000 बरस का पहले, पहले धर्म कैसे आए थे दुनिया में, मरने का डर, धर्म कैसे पैदा हुआ दुनिया में, मरने का डर, सुपर नेचुरल बिलीफ, अति प्रकृत विश्वास, कुछ सामाजिक कॉजेस है, कुछ मेंटल कॉजेस है, मानसिक कॉजेस है, और हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है, जो विकास है, ऐतिहासिक विकास, इसका फल है ये धर्म हम जो देख रहे हैं। मगर क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें एक बात क्लियर करके बोलना चाहिए। हम लोग जो आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ये शक्ति खो गया है कभी। ये दुख का बात है, इंडिया का इतना तरक्की हुआ, मगर इतना हो जाने के बावजूद हम लोग का भाईचारा नहीं है, दोस्ती नहीं है, एकता नहीं है। क्यों नहीं है? और तो होना चाहिए था, धर्म के नाम में, जात के नाम में, भाषा का नाम में, पॉलिटिक्स का नाम में हम लोग अलग हो जा रहे हैं। हम लोग के अंदर क्यों कोई तार, कांटा तार का जो बेड़ा होता है वो लगा दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसानियत का सोच खो दे रहा है दिन के दिन। हम लोग का जो आध्यात्मिक शक्ति है इसको अर्जन करना है, जो आज का मोटो है, जो डिस्कशन का मेन चीज है। वो कैसे करेगा, उसका कुछ रहस्य होता है, कुछ कारण होता है। कैसे हम लोग ये आध्यात्मिक शक्ति को बरकरार रखेगा, शक्तिशाली करेगा? नंबर वन, आत्म अन्वेषण, आत्मविश्लेषण, खुद के लिए हम कौन है, कैसा है, पहले खुद को जानना है। ये चर्चा हमको लगता है ब्रह्म कुमारी में होता है, एक तो कॉज है। नंबर टू, ध्यान और मनोजग, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और ध्यान, उसका भी चर्चा इस ब्रह्म कुमारी में होता है। हम आभारी हम लोग का, जो आध्यात्मिक जो शक्ति है कैसे एनरिच करेगा, उसको तो कुछ काम में लगाना चाहिए, सब बातों में नहीं। वो आप लोग करता है, एक बार हाथ ताली चाहिए इसके लिए, हाथ ताली चाहिए, एक काम हो रहा है। और की चाहिए नियमित सेवा और दया, आम गरीब के लिए दया है, सेवा है। हम आया है दूर से, पहला टाइम आ रहे थे, इतना प्यार मिला हम लोग से, इतना सेवा मिला, यही तो है इंसानियत, यही तो है प्रेम, यही तो है शांति। अनुप्रेरणा, स्वोन्नति, सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंस्पिरेशन, ये दोनों मिलता है। अगर मिलेगा तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। हमको लगता है ब्रह्म कुमारी में इसका चर्चा होता है एकदम रेगुलर। जैसे हम लोग का जो संयम, उसको प्रूव करने के लिए कभी कभी उपवास की जरूरत होता है। हम लोग का जो रिपु होता है, रिपु का संयम जरूरी होता है, इसलिए उपवास। और क्या, शुद्धता, मेंटल शुद्धता चाहिए, फिजिकल शुद्धता चाहिए। हम लोग जो चलते हैं, फिरते हैं, खाते भी हैं, हम देख रहे हैं हर जगह में ये ब्रह्म कुमारी में शुद्धता है, एक गर्व का बात है। हम सही जगह में आया है ये हमको लगता है, क्योंकि जरूरत है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। और मंत्र जप शक्ति का उत्सव होता है, मंत्र कभी कभी जरूरत होता है, जप करना जरूरत होता है, मेंटल पीस के लिए, सोसाइटी के लिए, आदमी को भलाई के लिए। विश्वास और सत्संग होना चाहिए, गुड बिलीव होना चाहिए, अच्छा आदमी के साथ मिलजुल होना चाहिए। हम लोग कौन बैठा है यहाँ, जो बैठा है परमात्मा बैठा है। सब सोच रहे कैसे आज तक उन्नति करेगा, देश को सही करेगा, कैसे शांति को फैलेगा पूरा देश में, पूरा दुनिया में। आप सोच रहे ना, शांति कैसे आएगा, अगर शांति रहने से क्या तकलीफ है। अरे साइंस है हम लोग का, डेवलप कर लेगा, फिनेंशियल डेवलपमेंट हो जाएगा, साइंस का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्या जरूरत है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का, सोच रहे ना कोई उसका उत्तर दे रहा है। अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं रहेगा तो आध्यात्मिक शक्ति अगर सही नहीं होगा तो इंसानियत का शिक्षा नहीं मिलेगा, तो मानवता का शिक्षा, जो ह्यूमन वैल्यूज वो नहीं रहेगा, तो एक घंटे लगेगा, एक दिन लगेगा पूरा दुनिया को खत्म करने के लिए। जो एटॉमिक बम हो रहा है पैदा किया हम लोग, जो न्यूक्लियर बम पूरा वर्ल्ड में है, सिर्फ एक दिन लगेगा पूरा दुनिया खत्म होने के लिए, पूरा दुनिया को 700 करोड़ आदमी एक दिन में खत्म, एक ही चीज है इंसानियत, एक ही चीज है मानवता। किसी को मारेगा नहीं, जिसको बम फेंकता है वो तो बर्बाद हो जाता है। और क्या है? विश्वास, आत्मविश्वास, ईश्वर विश्वास। ईश्वर का क्या होता है? ये जो ईश्वर के बाद बोल रहा है क्या है? ये तो ज्योति है, उसके बाद नूर है, जो अल्लाह है। अल्लाह क्या है? कुछ बॉडी नहीं है, जो नूर है, एक ज्योति है, एक सोच है, जो सोच हम लोग को चेतना देता है, जीने का चेतना, बचने का चेतना, प्यार का दिशा दिखाता है। प्रकृति के साथ संजोग, जो नेचुरल ब्यूटी होता है उसका साथ जितना जुड़ेगा ना हम लोग, ईश्वर का दान है। इतना दिल मन सब, तन मन दिल सब सही हो जाएगा। ये जो ब्रह्म कुमारी से माउंट अबू में है, कितना खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी है, ये भी चल रहा है, इसका भी चर्चा चल रहा है। सोम करना है और पढ़ना है, परिश्रम करना है, अर्धभाषा करना है, ये सब चीज को मानेगा तो हम लोग का आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा। वो काम इस जगह में चल रहा है, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय यूनिवर्सिटी आश्रम, जहां दुनिया का हर जगह में जहां जहां है सब जगह ये दिशा चल रहे। हमारा कुंडली से अभिवादन है, आप लोग चलते रहिए। और एक बात बोला था स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, इस्लामिक बॉडी और वैदिक ब्रेन एक मजबूत भारत को तैयार कर सकता। कहां इंसानियत है? पड़ोसी को समझता नहीं, उसका दिल में दुख क्या है, उसका शोक क्या है, ये जानने का कोशिश भी नहीं करता। इसलिए आदमी का अंदर क्या हो जा रहा है? भेदाभेद हो जा रहा है, भाग हो जा रहा है, विद्वेष आ जा रहा है। इसको बंद करना है, ये वचन हम लोग को लेना है। शांति है से दिल का शांति, मन का शांति, वो शांति आएगा अगर हम लोग का दिल में इंसानियत जागरूक रहेगा, तब उसका चर्चा, उसका विश्वास, उसका शपथ आज लेने का दिन है। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद काजी मौसम अख्तर जी ने, बहुत सुंदर एकता का संदेश दिया है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबके अंदर प्रेम, सबके अंदर भाईचारा, वो केवल अध्यात्म के द्वारा ही संभव है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म हम सबको जोड़ने वाली चीज है। धर्म के नाम पर हम सब बंटते चले गए, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन अध्यात्म हम सबको एक करता है। अध्यात्म अर्थात आत्मा का अध्ययन, आत्मचिंतन। हम सब आत्माएं हैं और हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। इसी भाव को जीवन में लाना, यही अध्यात्म है, उसके साथ मन को जोड़ना। जहां पर देह की, देह के धर्मों की कोई दीवारें नहीं रहती, लेकिन हम सब आत्माएं एक पिता की संतान हैं। और जब मन को उसके साथ जोड़ते हैं तो वो अनंत शक्ति प्राप्त होती है, जिससे हम जो करना चाहें वो कर सकेंगे और जो छोड़ना चाहें वो छोड़ सकेंगे। क्योंकि दुर्योधन को बहुत समझाया योगेश्वर ने, लेकिन उसने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तास्मि तथा करोमि। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर धर्म पर चलने की शक्ति नहीं है। मैं ये भी जानता हूं अधर्म क्या है, लेकिन अधर्म को छोड़ने की शक्ति नहीं है। और वो शक्ति मिलती है अध्यात्म से, क्योंकि आज इंसान के अंदर जरा सी भी सहन शक्ति नहीं है। पिछले मास जुलाई में हरियाणा के अंदर एक गांव के अंदर 10 जुलाई को जिस दिन गुरु पूर्णिमा थी, गुरुओं का पूजन किया जाता है, उस दिन एक शिष्य ने स्कूल के अंदर अपने प्रिंसिपल को चाकुओं से गोंद दिया। और केवल किस लिए? ना तो उस गुरुजी ने, प्रिंसिपल ने उनको डांटा था ना मारा था, केवल इतना ही कहा था कि स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन रखो, केवल इतना। गुरुओं के प्रति वो आदर भाव नहीं रहा, क्योंकि वो सहन शक्ति नहीं रही, दो शब्द सुनने की भी,
तो अध्यात्म हमें वो शक्ति देता है जिससे हम गलत को छोड़ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। यही संदेश हमें काजी मौसम अख्तर जी ने दिया। और अब मैं अनुरोध करती हूँ, समय जल्दी भाग रहा है, केवल 5 मिनट के लिए। हमारे बीच में कुछ महानुभाव हैं, 1-2 के विचार हम सुनेंगे, बाकियों के तो हम सबके सुनेंगे। 2 दिन ये सत्र चलते रहेंगे और आप सबका जो मंथन चिंतन है वो हम सब सुनेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ महंत नानक दास जी महाराज, प्रमुख कबीर पंथी बड़ी खाटू जी से हमारे पास आए हैं, चंद मिनट में, 4-5 मिनट में ही अपने विचार रखेंगे।
ओम शांति। बोलिए भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत समाज की, ब्रह्म कुमारी भाई बहनों की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में प्रणाम। आज के इस माउंट आबू के ओम शांति के मुख्यालय में जमीन से 5000 फीट ऊपर आध्यात्म का एक बहुत बड़ा संगम यहाँ पर हो रहा है और इस मंच पर विराजमान सभी साधु संत महात्मा आचार्य महामंडलेश्वर और सभा में विराजमान सभी साधु संत महात्मा ब्रह्म कुमारी भाई बहन और बाहर से आए हुए सभी भक्तों को मेरा ओम शांति साहिब बंदगी। सजनों, ये ओम शांति सेंटर ब्रह्म कुमारी भाई बहन एक दुनिया में मैसेज दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा मिशन चला है। क्या? कि हम सामाजिक समरसता सद्भावना के साथ साथ में आध्यात्मिक उन्नति करके और विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश दिया जाए कि वास्तव में मानवता क्या होती है। ये संदेश ओम शांति के माध्यम से दिया जा रहा है और इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी साधु संत महात्माओं को बुलाते हैं, सभी अखाड़े के लोग आते हैं, सभी परंपरा के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं और यहाँ आकर के और एक ऐसा मधुरमय माहौल बनाते हैं और मीठा आनंद और प्रेम का वातावरण एक बनाते हैं जिसे पूरे देश में सामाजिक समरसता का प्रेम का मैसेज जाता है। आज का विषय है अध्यात्म के द्वारा मानव का उत्थान। आप समझ रहे होंगे, अभी दीदी ने बताया कि उस शिष्य ने अपने गुरुजी को चाकू से गोंद दिया। क्यों? क्योंकि उनके घर में संस्कार नहीं है, केवल अक्षर ज्ञान है, केवल पढ़ाई की तरफ नजर है। ये पढ़ाई काम नहीं आएगी। हमारे जो ऋषि मुनि महर्षि साधु संत महात्मा हुए वो कौन सी कॉलेज में गए, कौन सी डिग्री लेके आए, लेकिन आज पूरी दुनिया उनकी वाणी पर, उनके वचनों पर यहां बैठ करके अनुसंधान करते हैं। वो हमारी आध्यात्म शक्ति का ही परिणाम है और आध्यात्म शक्ति से ही हम अच्छे आदमी बन सकते हैं, हम अच्छे पवित्र रह सकते हैं। अब यहाँ ब्रह्म कुमारी भाई बहनों का जो आप देख रहे हैं व्यवहार कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, कितना प्रेम है। घर में खाना सभी खाते हैं लेकिन यहाँ पर जो भोजन करते हैं ये बहनें कितने प्रेम से खाना खिलाते हैं, आपने देखा होगा, सबने अनुभव किया होगा कितना प्रेम से और कितनी व्यवस्था करके रखी हुई है। ये सब बहनों का ही चमत्कार है। और देखिए सभी महात्माओं के और सभी के गले में जो दुपट्टा डाला है, ये दुपट्टा कितना सुंदरता का प्रतीक है। ऐसा दुपट्टा दूसरे कई मंच पर कई जगह मैंने नहीं देखा, ये केवल ओम शांति के यहाँ सेंटर में ही दिखाई देता है। ये सुंदरता का प्रतीक है, यहाँ पवित्रता का प्रतीक है। तो इसीलिए आज आप लोग आए और आप यहाँ से सकारात्मक सोच अंदर पूरी भर के जाओगे और अपने परिवार में, समाज में, अपने बच्चों को ये विशेष ज्ञान देंगे। इसी वाणी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि कल विशेष समय रहेगा। आज तो दीदी ने बोल दिया इसीलिए मैं थोड़ा बीच में आ गया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी संतों को पुनः प्रणाम, सभी दीदियों को हृदय से विनम्र से प्रणाम, ओम शांति।
धन्यवाद। महंत नानक जी महाराज थोड़े समय में बहुत सुंदर संदेश हम सबको दे करके गए। और अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री माधवानंद जी महाराज, आराधना कुंज वृंदावन से हमारे बीच में आए हैं, तो वो भी चंद मिनट में अपना संदेश देंगे, मंच पर आएंगे, उनके अनुभव सुनेंगे।
ओम शांति। मंच पर आसीन पूज्य चरण संत वृंद, ब्रह्मा कुमारी बहने एवं भ्रातागण, समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, आज का जो विषय है बहुत सुंदर कि अध्यात्म के द्वारा मानव जीवन का उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो। मानव जीवन का विकास, इसमें दो एक बातें बहुत संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहूं। मानव जीवन का उत्थान, यहां बाकी जीवों की चर्चा नहीं की गई है, मानव की चर्चा की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य के उत्थान पर इस पृथ्वी का भविष्य निर्भर है। अगर मनुष्य मानव का उत्थान होता है तो धरती का भी उत्थान होता है, अगर मनुष्य का पतन होता है तो धरती का भी पतन होता है। एक बात तो यहां समझ लें। और मनुष्य को उत्थान करने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किया, वैज्ञानिक भी प्रयास कर रहे हैं साइंस के द्वारा, ये साइंस की दिन रात खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, अपने जीवन को खपा देते हैं अनुसंधान पर, रिसर्च पर। एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य को कैसे सुखी कर दिया जाए, मनुष्य को कैसे विकसित कर दिया जाए। लेकिन एक तरफ विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ मानवता गर्त में भी जा रही है। जैसे एक तरफ कोई पहाड़ बना रहा है, दूसरी तरफ खाई खोदता चला जा रहा है। तो यह जो वैज्ञानिकों का ढंग है यह भी सफल नहीं दिखाई पड़ता। तो इसमें जो ऋषि दृष्टिकोण है, ऋषियों ने किस तरह से देखा या विचार किया कि मनुष्य को कैसे ऊपर उठाया जाए, तो उसका एक ही उपाय दिखाई पड़ा, अध्यात्म। मतलब जो भीतर से जो आत्मिक प्रकाश जब हमारा होगा तभी हमारा विकास होगा, पूरे मानवता का विकास होगा और उसके साथ पूरी पृथ्वी का विकास होगा। मनुष्य के विकास में पूरी पृथ्वी का विकास निहित है, क्योंकि जितने प्राणी हैं इस धरती पर आप देखेंगे मनुष्य उसमें विशिष्ट है। इसकी बनावट आज वैसे भी आप देखेंगे स्ट्रक्चर जो बिल्कुल खड़ा है, इसका सिर बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ा है ऊपर मस्तिष्क, ऐसा कोई भी जीव नहीं है धरती पर। आप किसी भी जीव का अवलोकन करें जो बिल्कुल खड़ा है। शायद वैज्ञानिक कहते हैं इसलिए भी मनुष्य इतना विकसित हुआ कि इसका मस्तिष्क सबसे ऊपर है और इसके जो सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो डेवलप हो पाई। चलिए कारण जो भी हो, पर यह बात तो स्पष्ट है कि मनुष्य बाकी जीवों से विशिष्ट है और बाकी जीवों में उत्थान पतन नहीं होता। आप 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले कोई हाथी हो, जंगल में शेर हो, कुत्ता बिल्ली, सबको देखिए एक जैसे, जो पहले थे आज भी ऐसे हैं, लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। या तो मनुष्यों में कोई कोई बहुत ऊंचाई को छुआ, भगवत स्वरूप हो गए, भगवान को प्राप्त कर गए, या तो मनुष्यों ने ही आसुरी वृत्ति में आप्लावित होकर और बहुत नाश किया, बड़े बड़े युद्ध किए, बड़े बड़ी लड़ाइयां हुई, ये सब मनुष्यों ने ही किया है। पृथ्वी का उत्थान भी किया है, इतना बढ़िया सम्मेलन भी जो हो रहा है ये मनुष्यों के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं बहुत विभत्स कार्य भी हो रहे हैं वो मनुष्यों के द्वारा ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब एक बात साफ हो गई कि मनुष्य के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि पृथ्वी को हम कैसे उत्थान की तरफ ले जाएं अथवा पतन की तरफ ले जाएं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नशेनी, तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है, या तो एक नशेनी की तरह, एक सीढ़ी की तरह है। आप चाहे उस सीढ़ी को लगाकर ऊपर चढ़ जाएं, चाहे खाई में उतर जाएं, स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे अपवर्ग में आप बैकुंठ चले जाएं, यह मनुष्य शरीर आप किसी भी तरह से उपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं, इसमें परमात्मा कुछ नहीं करता। यहां पर हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे दुरुपयोग करें सदुपयोग करें, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी संभावना भगवान ने भर रखी है। उस संभावना का हम सम्यक सदुपयोग करें तो हम इतनी ऊंचाई छू सकते हैं कि देवी देवताओं को भी पीछे छोड़ सकते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो भगवान ने हमें प्रदान किया। तो उस हमें अध्यात्म को समझना है जहां से हमारा उत्थान होगा। दो मिनट में मैं बात रखूं, श्रीमद् भगवद गीता आप अध्ययन करते हैं, सनातन धर्म का श्रेष्ठतम ग्रंथ। अर्जुन विषाद से ग्रसित हो गए, प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण जहां से गीता का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं वो आत्म तत्व का है, बिल्कुल शुद्ध आत्म तत्व का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, जैसे कोई युद्ध की बात ही भूल गए, न कोई युद्ध की बात कर रहे हैं, अर्जुन तुम ऐसे लड़ाई करो, इस एंगल से करो, ये सब बात ही नहीं, शुद्ध आत्म तत्व से क्यों, यही अध्यात्म है, अध्यात्म के द्वारा मानवता का विकास। तो गीता का सौंदर्य देखेंगे, अर्जुन विषादग्रस्त हैं, बहुत ज्यादा विषादग्रस्त हैं, वो स्वयं अपनी स्थिति बताते हैं कि मेरा मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से छूट रहा है, कांप रहा है, रोमांच हो गया है, मैं खड़ा होने में भी शक्य नहीं हूं गोविंद। पर अब इस व्यक्ति का, अब एक मान लो साइकोलॉजिस्ट के पास ऐसा व्यक्ति जाए जो बहुत डिप्रेशन में चला गया है, डीप डिप्रेशन में, तो उसका एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करेगा, बहुत प्रकार से बोलेगा कि ठीक है, सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक हो जाएगा। लेकिन भगवान कृष्ण कहां से बात शुरू कर रहे हैं, अब मन से नहीं, बीमारी मन में है लेकिन इलाज हो रहा है आत्मा से। तो आप गीता का सौंदर्य देखेंगे, धीरे धीरे इलाज करते करते विषाद योग, जो गीता प्रारंभ होती है, मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय, मोक्ष संन्यास योग पर जाकर, मतलब मोक्ष संन्यास के शिखर पर ले जाकर बैठा देते हैं अर्जुन को। यह तरीका है, मतलब अध्यात्म के द्वारा मानवता का विकास, यह ऋषि दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि मनुष्य को सुखी कर दो, पदार्थों की कमी है हमारे पास, तो और बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी को बनाओ, उससे विकास करो। लेकिन जितनी टेक्नोलॉजी के द्वारा सुविधाएं बढ़ रही है, आप देख रहे हैं कि पागलखानों में न पागलों की कमी है, न हॉस्पिटल में, सब बेड भरते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, सब छोटे पड़ते चले जा रहे हैं, तो क्या विकास है? ये तो रोने जैसा लगता है। विकास के साथ साथ महाविनाश का भी, और आज विश्व एक एटम बम, हाइड्रोजन बम के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको आप विकास कैसे कहेंगे? वैज्ञानिक अब सिर पर हाथ रखकर बैठे, बड़े बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे, अंत में बहुत डिप्रेशन में गए, और देखे कि हम लोगों ने क्या दिया मानवता को, हमने एक विनाश का हथियार दे दिया, एक फार्मूला दे दिया, अबे तो आसुरी वृत्तियों के भी हाथ लग गया, अब तो पीछे लौटना होता नहीं है। अब आज एटम बम, परमाणु बम पर दुनिया बैठी हुई, अब पीछे नहीं लौट सकते वैज्ञानिक, कोई उपाय नहीं। तो ऋषि कहते हैं कि नहीं, यहां से नहीं होगा, प्रकृति में तुम कुछ ना कुछ आविष्कार करके कुछ रहस्य को प्राप्त कर लेते हो, और चाहते हो कि मनुष्य को आनंदित कर दूं, नहीं, सुख सुविधा प्रदान कर सकते हैं आप टेक्नोलॉजी से, लेकिन शांति और आनंद वो तो केवल और केवल अध्यात्म से ही मिल सकता है। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन मैं अपनी वाणी को यहीं पर पुष्पांजलि को विश्राम देता हूं और अर्पित करता हूं बाबा के उस चरणारविंदों में, और सुंदर यह जो संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जहां से शांति का संदेश बाबा ने दिया है और पल्लवित पुष्पित हो रहा है, और ये पूरे विश्व को आनंदित करे, विश्व में मानवता का और उत्थान करे, यही मैं प्रार्थना करता हूं उन परम चेतनाओं से। ओम शांति शांति शांति।
धन्यवाद स्वामी माधवानंद जी महाराज, वृंदावन से हमारे बीच में आए हैं, श्रीमद् भगवत गीता का संदेश देते हुए हम सबको फिर से जागृत किया कि केवल भौतिक प्रगति इंसान का उत्थान नहीं कर सकती, उसके लिए अध्यात्म की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन दूसरी तरफ जो जीवन मूल्य हैं उनका अधोपतन हो चुका है, और उनके उत्थान का केवल एक ही मार्ग है, और वो है अध्यात्म। बहुत सुंदर संदेश दिया है, प्रोग्राम अपने अंतिम चरण की ओर है, आप सब बड़े धीरज से बैठे हुए हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इसलिए एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अभी वैसे तो और वक्ताओं का हमने नहीं रखा था, लेकिन हमारे कमल किशोर शास्त्री जी बहुत ही प्यार से अनुरोध कर रहे थे कि केवल 3 मिनट मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं। सचमुच में सबके लिए, संतों के लिए बड़ा प्यार है उनको, और 50 से भी ज्यादा संतों को अपने साथ लेकर के आए हैं, इसलिए कमल किशोर जी के लिए भी एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाएं।
आध्यात्म की हुई, नैतिकता के बिना आध्यात्म अधूरा है। 2 भैंसे आपने पाल रखी हूं, 1 भैंस को अच्छे से खूब खाना खिलाओ और 1 को 7 दिन खाना मत दो, 7वें दिन जो भूखी रखी थी उसको खाना दो, और जो तगड़ी हुई 7 दिन खा के उसे खाना मत दो, सींग मार के कमजोर वाली को भगा देगी। हम गायों को रोज चारा खाना देते हैं तो वहां देखते हैं यही तमाशा होता है, एक दूसरे को कैसे सींग मार के छीन लेती हैं। क्योंकि उनके अंदर दिमाग नहीं है। अभी महाराज जी ने बताया ना कि दिमाग सिर के ऊपर है, हमारा खड़े रहते हैं तो ऊपर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो नैतिकता जानवरों में नहीं है, मानव में तो है, सिखाएगा कौन नैतिकता। और अनैतिकता की वजह से ही हम लोग गर्त में जा रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, तो अध्यात्म कैसे आएगा। अभी मैं संतों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि हम संत भगवा वेश में हैं, और जो लोग भगवाधारी नहीं हैं, आम लोग हैं, वो हमारे आके चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्या वो हमसे आशीर्वाद लेते हैं? नहीं, ध्यान रहे, हमसे नहीं लेते। वो हमारे भगवा वेश को सम्मान देते हैं, हमारी तपस्या को सम्मान देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने इनके चरण छुए तो उससे हमें हमारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा, और अगर मैं पैंट कमीज पहन के घूम लूं तो क्या मुझे कोई चरण छू के आशीर्वाद लेने के लिए आएगा? नहीं आएगा। नैतिकता सिखाई कहां जाती है? नैतिकता सिखाई कहां जाती है? सिखाई जाती है तो केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाई जाती है, क्योंकि हम भगवा वेश में अगर संत हैं, महंत हैं, तो ये श्वेत वस्त्रों में संत घूम रहे हैं, और इनके लिए एक ताली तो बनती ही है, करतल ध्वनि बनती ही है। सभी को सेंटरों में जाना चाहिए और इन जो श्वेत वस्त्रधारी बहनों के आचरण को हमें देखना चाहिए, कैसे करती हैं आचरण, कैसे इन्होंने सीखा है, कितनी इनकी तपस्या है। इसलिए इनको कहा जाता है राजयोगिनी तपस्वी मूर्ति बहने ब्रह्मा कुमारीज और ब्रह्मा कुमार। एक बात और कह दूं सभी संतों से, यहां कुछ लोगों ने उच्चारण किया है ब्रह्म कुमार, ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी आश्रम नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी है। ध्यान रहे, किसी को हम आशीर्वाद देते हैं और कहें सदा सुखी रहो, सा को छोटे ऊ की मात्रा लगती है, और कह दे सदा सुखी रहो, बड़े ऊ की मात्रा लगा दे, उसका जीवन सूख जाएगा। नाम गलत मत लो, बोलो ब्रह्मा कुमारी आश्रम, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, नाम तो सही ले ले हम संत लोग। अब मेरे साथ उच्चारण करेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, आवाज नहीं आई, मेरा बाबा, तेरा बाबा, सबका बाबा, वो शिव बाबा, ओम शांति, ओम शांति।
हमारे महामंडलेश्वर कमल किशोर जी इस परिवार के बहुत ही स्नेही सदस्य कहें, और उनको भी हम ब्रह्मा कुमार ही कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अब अंतिम चरण में मैं अनुरोध करती हूं बहनों से, कल यहाँ सभी संतों का सम्मान किया गया था, लेकिन कुछ संत बाद में पहुंचे हैं, कुछ आज भी पहुंचे हैं, तो मैं कुछ संतों का नाम अनाउंस करती हूं, उन सबका ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से सम्मान किया जाएगा, और जो छोटी सी स्नेह की भेंट है वो उन्हें दी जाएगी। तो सबसे पहले कुछ तो हमारे मंच पर ही हैं, कुछ नीचे भी हैं, आचार्य श्री चंद्रशेखर शास्त्री जी महाराज, पीठाधीश्वर पीताम्बरा विद्यापीठ मोदी नगर से हैं। मनोरमा दीदी स्वागत करेंगे, मैं सबके नाम अनाउंस करती जा रही हूँ। स्वामी श्री श्री राजन जी महाराज, मुख्य संचालक प्रज्ञा धाम पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, सम्मान है, तिलक के द्वारा, अंग वस्त्र के द्वारा और छोटी सी स्नेह की सौगात के द्वारा आप सबके त्याग तपस्या और आपकी उत्कृष्ट साधनाओं के लिए ये छोटा सा स्नेह का चिन्ह है जो आप सभी बहुत प्रेम से स्वीकार करेंगे। काजी मौसम अख्तर जी, आपका भी सम्मान होगा, आप भी आज ही मंच पर पहुंचे हैं। उसके साथ साथ श्री माधवानंद जी महाराज जो वृंदावन से हमारे बीच में आए हैं, मनोरमा दीदी जी उनका भी सम्मान करेंगे।
हाँ जी काजी मौसम अख्तर जी, मंजूषा बहन गायत्री विद्यापीठ कटनी से हमारे बीच में आए हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। सर्व धर्म उसके साथ साथ श्री प्रकाश भोमिया जी सर्व धर्म सेवा समिति के अध्यक्ष कटनी से आए हैं, आप भी मंच पर आएं, आपको भी सम्मानित किया जाएगा। श्री माधवानंद जी महाराज का भी स्वागत करेंगे मनोरमा दीदी। बहन मंजूषा गायत्री विद्यापीठ कटनी से आए हैं, मौसम अख्तर जी का सम्मान हो रहा है। साध्वी नीना ढींगड़ा जी जो दिल्ली से आए हैं, मंजूषा जी गायत्री विद्यापीठ कटनी से आए हैं, उनका सम्मान हो रहा है। श्री प्रकाश भोमिया जी कटनी से हमारे बीच में हैं, साध्वी नीना ढींगड़ा जी, दिल्ली से पधारे हैं आप, आपका भी सम्मान है। फिर से सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और अब जैसे हमने प्रभु स्मृति से इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था, अब फिर से हम उस ईश्वर पिता का धन्यवाद करने के लिए 3 मिनट प्रभु स्मृति में बैठेंगे।